तो आज हमारा तीसरा सेशन शुरू होता है जिसमें हम लोग आत्मा के विषय में देखेंगे। फर्स्ट क्लास में देखा भगवद गीता को समझने का प्रोसेस, सेकंड क्लास में देखा ईश्वर तत्व के विषय में भगवान, और आज की क्लास में हम देखेंगे आत्मा के विषय में। आत्मा क्या है, ईश्वर के साथ क्या संबंध है, उसकी बद्ध अवस्था क्या है, मुक्त अवस्था क्या है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पुनरावृत्ति के लिए आप कृपया दोहराना चाहेंगे एक एक दो दो पॉइंट पिछली क्लास का।
तो पहले आपने ईश्वर और जीव वो बताया था, अंतर बताया था।
हाँ जी।
और अंतर के साथ साथ ईश्वर के बारे में बताया था।
हाँ जी, हाँ जी।
तो एक तो सुप्रीम जो क्वालिटी बताई थी, मतलब कंट्रोल है,
सुप्रीम कंट्रोलर ईश्वर, मतलब सुप्रीम कंट्रोल
वैल्यू
जी,
सौंदर्य भी उनके पास है।
हाँ हाँ,
ऐश्वर्य भी है।
अच्छा, भगवान के छह गुण,
भगवान के जो गुण है,
हाँ छह
पूरे बताए थे।
ओके।
और चूंकि वो गुण और दूसरे लोगों में नहीं है,
हाँ जी,
मतलब वो नहीं आते उस कैटेगरी।
हाँ हाँ।
और वो यदि जो एब्सोल्यूट जो है,
हाँ जी,
वो गुण आते
हैं, हाँ जी,
तो उसके तरफ, और यदि हम लोग उसी की तरफ जाते हैं,
हाँ,
तो फिर हम लोग धीरे धीरे, मतलब या नियर टू दैट,
हाँ,
कैन नॉट बी बिकम ए गॉड।
यस।
हो सकता है कि आपके फॉलोअर आपको गॉड जैसा करने लगे, जैसे कि सब कोई आदमी पावरफुल होता है, गॉड फादर जो है, हम लोग टाइटल देते हैं, जनरली गॉड फादर इस मंगलर से उनके लिए यूज किया जाता है इन नेगेटिव सेंस। तो गॉड फादर खुद का दे आर पावरफुल इन सम आइदर, मतलब दैट पावर ऑफ मनी,
हां जी,
द पॉलिटिकल पावर,
हां जी,
और एनी अदर पावर,
हां जी,
बट दे कैन नॉट बी दैट मच सुप्रीम बिफोर ऑल द प्रॉपर्टी जनरेट।
यस।
बट समहाउ द स्लोली स्लोली इफ दैट वी गैदर any of the product quality are more than that,
हाँ जी,
तो people will definitely will follow।
yes।
यदि उनमें से एक भी quality है, जैसे बहुत पैसा है तो भी follower हो जाएंगे।
yes, yes।
बहुत सुंदर है तो हो सकता है।
yes।
जैसे like actors and actress like,
yes, yes,
है ना, and
that, because they become attractive,
they become the attractive,
yes,
so उसके भी follower हो जाएंगे।
yes।
एक आध और कोई power आ जाए, knowledgeable हो जाएंगे।
yes।
है ना।
yes।
like जैसे, और
लेकिन हमको ये स्पष्ट समझना है कि जो भी हमारे पास शक्ति आ रही है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज कृष्णास प्रॉपर्टी, सो इट शुड बी यूज्ड इन कृष्णास सर्विस ओनली, नॉट फॉर अवर पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट, बिकॉज देन फिर हम लोग फिर विद्रोही हो गए। फिर भगवान की संपत्ति है, भगवान के ही द्वारा दिया गया सौंदर्य है, भगवान के ही द्वारा दिया गया बुद्धि है, और हम यदि उसे भगवान की सेवा में यूज ना करके अपनी सेवा में यूज करने लगे तब फिर हम चोर कहलाएंगे। इसलिए जैसे जैसे आत्मा का विकास होता है, या किसी अन्य प्रकार से भौतिक प्रकार से भी यदि हमें भौतिक कुछ भी प्राप्त होता है इन छह ऐश्वर्यों में से, तो भौतिक जगत के जीव जो बद्ध हैं वो क्या करते हैं, उसे अपने लिए यूज करते हैं, बिकॉज दे ट्राई टू इमिटेट गॉड। लेकिन वास्तव में उसका होना चाहिए कि वो भगवान की सेवा के लिए प्रयोग में लाने चाहिए। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है तो उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में, प्रचार करने में कि आप सभी भगवान की शरण में जाइए। कोई व्यक्ति के पास बहुत शक्ति है तो उसे जो उसके अनुयायी हैं उनको भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए। तो इन सब शक्तियों से हम भगवान का सेवा करनी चाहिए, तब वो शक्तियां आध्यात्मिक हमको फल देंगी, और नहीं तो वो हमारे बंधन का कारण बन जाएंगी यदि उन शक्तियों को हम अपनी सेवा में लगाएंगे। ओके। आप कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा,
इसमें जो छह स्ट्रेंथ बताया, रिचीज है, स्ट्रेंथ है,
हाँ जी,
उसका ब्यूटी है, नॉलेज है,
हाँ जी,
एंजॉयमेंट है, रिनंसिएशन है,
हाँ जी,
तो ये सब क्वालिटीज भगवान के अंदर होती है।
हाँ।
इनको जिसकी ये सब क्वालिटीज ह्यूमन बींग के अंदर पॉसिबल नहीं है,
नहीं है,
क्योंकि इतना धनवान नहीं हो सकता जैसे कृष्ण भगवान।
यस।
स्ट्रेंथ उसमें,
यस,
ये सब क्वालिटीज के हिसाब से कोई सुप्रीम भगवान।
यस, वेरी गुड। तो इन द पर्सनैलिटी ऑफ, हम पर्सनैलिटी ऑफ कृष्णा, हम लोग ये सभी षड ऐश्वर्य पूर्ण रूप से देख सकते हैं। आप तो आए नहीं थे, आप तो भाग गए। ओके। तो ईश्वर, परम ईश्वर जो सुप्रीमली कॉन्शियस, आप रह गए, आप बताना चाहेंगे कुछ?
भगवान एक ही है और कृष्णा स्वयं भगवान है।
हाँ।
और हम सब उसके, हमें अपने अंदर उनके गुण फॉलो करने हैं, या हाँ। कृष्ण जो जो प्रीच कर गए हैं उसको हमें समझना है, वैसे ही।
हाँ जी। तो मैं एक प्रश्न पूछूं, तो क्या हम कभी कृष्ण के समान हो सकते हैं?
नहीं, हम लोग कभी कृष्ण के समान नहीं हो सकते।
हाँ जी।
पर हम कृष्ण में लीन हो सकते हैं।
कृष्ण में लीन मतलब किस तरह से?
कृष्ण में लीन मतलब जब हम कृष्ण को भगवान मानेंगे तो वो हमारे अंदर आएंगे। हमारे हम कृष्ण के तरफ पहुंचने के लिए अग्रसर हो
सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट मेरा थोड़ा कल डिस्कशन में रह गया, पूरी तरह से थोड़ा नहीं हो पाया। तो जो लीन होना है, ये बहुत एक जनरल कंसेप्शन एक है कि मुक्ति का मतलब है कि हम भगवान में लीन हो जाते हैं। ये कंसेप्शन जनरली लोग मानते हैं। तो इसका लीन होने का वास्तव में अर्थ क्या है, ये हम थोड़ा देखेंगे। तो जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, वो तीन ग्रेड्स में हम उसको समझ सकते हैं, तीन लेवल्स में उसको समझ सकते हैं। प्रथम स्तर है ब्रह्म, दूसरा स्तर है परमात्मा, और तीसरा स्तर है भगवान। परम सत्य को इन तीन स्तर पे समझा जा सकता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द्यते। जैसे उदाहरण लें, सूर्य है। तीन साइंटिस्ट सूर्य का स्टडी करना शुरू किए। साइंटिस्ट ए, जिसका ज्ञान सबसे निम्न स्तर का है, जिसकी नॉलेज, जिसकी एक्सेस, तो वो केवल सूर्य के प्रकाश तक ही उसका ज्ञान सीमित था। इसलिए जब उसने सूरज का डिस्क्रिप्शन दिया तो क्या दिया कि सूरज क्या है, सूरज एक निराकार प्रकाश है जिसमें ऊष्मा होती है। उसने सूरज का डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो बी है, उसने भी सूरज का स्टडी किया, लेकिन उसने देखा कि प्रकाश है, लेकिन उसका सोर्स है वो सन ग्लोब, सूरज जो चमकता हुआ जो ग्लोब है वहां से प्रकाश आ रहा है। तो उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि सूर्य क्या है, सूर्य एक आग का गोला है जिसमें से ये प्रकाश जो सभी तरफ फैल रहा है ये आ रहा है। थर्ड जो साइंटिस्ट था वो और आगे गया और उसकी नॉलेज आगे गई, और उसने देखा कि जो सूरज का जो ग्रह है उसको चलाने वाले, उसके अंदर एक सूर्य देव जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं मैकेनिज्म को, तो उसकी पहुंच वहां तक भी थी। तो तीनों के तीनों साइंटिस्ट एक ही सूरज को डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, और तीनों में तीनों कोई भी गलत नहीं है क्योंकि वो एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच का स्तर अलग अलग है। जो साइंटिस्ट ए है उसकी पहुंच सबसे कम है, और जो साइंटिस्ट सी है उसकी पहुंच सबसे अधिक है। जो साइंटिस्ट सी है वो ऑलरेडी साइंटिस्ट बी और ए के तो जो जानता है वो जानता है ही, पर वो ऐसी चीज भी जानता है जो ए और बी नहीं जानते हैं। उसी प्रकार से परम सत्य के तीन स्तर हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है, जैसे हमने आपको पोस्टर दिखाया था लास्ट टाइम, आज हम लेके भी आए आपके लिए। तो भगवान के शरीर से जो निकलने वाला तेज है, जो आध्यात्मिक जगत में सभी तरफ फैला है, जिसके अंदर सभी वैकुंठ जगत स्थित हैं, उस प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं। तो वो ब्रह्म स्तर है। फिर परमात्मा क्या है, भगवान हर इस भौतिक सृष्टि में हर कण कण में अपना एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, चतुर्भुज विष्णु रूप में, जिनको हमने देखा था वहां, आपने देखा होगा, याद होगा आपको। तो विष्णु तीन प्रकार के हमने बताए थे, एक महाविष्णु, फिर एक गर्भोदकसाई विष्णु और एक शिरोदकसाई विष्णु। तो जो शिरोदकसाई यानी जो इस ब्रह्मांड के अंदर हर जीव के अंदर लिविंग और जो नॉन लिविंग है मैटर उसके अंदर भी जो कण कण में जो रूप व्याप्त है जिस रूप का, उसे कहते हैं परमात्मा। तो जो लिविंग बींग्स जैसे हम हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मा है और एक परमात्मा। परमात्मा है भगवान का एक्सपेंशन, वो पर्सनल एक्सपेंशन है। जीव है वो भी भगवान का ही अंश है, लेकिन वो सेपरेटेड एक्सपेंशन है। ये पॉइंट पर आज हम और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों में अंतर क्या है। पर परमात्मा भगवान का एक्सपेंशन है जो हर जीव में है और हर एटम एटम में भी है, नॉन लिविंग में भी है, वो परमात्मा। सेकेंड लेवल भगवान का, जिसके द्वारा भगवान सभी जगह व्याप्त हैं। हम बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी हैं। तो भगवान इस रूप में अपने परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं। इस भौतिक जगत में हर कण कण में भगवान, हम बोलते हैं कण कण भगवान है, तो कण कण भगवान किस रूप में, परमात्मा रूप में है। थर्ड, भगवान साक्षात जिनका दिव्य स्वरूप है, सच्चिद आनंद स्वरूप, पूर्ण पुरुषोत्तम, इसे कहते हैं भगवान। जो हमने देखा षड ऐश्वर्य पूर्ण, जो कि आध्यात्मिक जगत में पर्सनली रहते हैं, गोलोक वनिवसति अखिल आत्मभूता, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, वही भगवान स्वयं साक्षात गोलोक में रहते हैं। तो वो थर्ड लेवल है भगवान, जिनका शरीर है, कैसा शरीर है, मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल बॉडी, मटेरियल नहीं, दिव्य शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, जो आध्यात्मिक जगत में रहता है। और तो ये तीन स्तर हैं परम सत्य को समझने के। तो कुछ लोग जो केवल भगवान को निराकार मानते हैं, जो मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, केवल भगवान एक शक्ति के रूप में सब जगह विद्यमान है, तो वो भी उसी एक भगवान की ही बात कर रहे हैं, पर उनका जिस स्तर की बात कर रहे हैं वो कौन सा स्तर है, वो ब्रह्म प्रकाश जो है उसकी बात कर रहे हैं। या तो सेकेंड, भगवान इस भौतिक जगत में भी अपनी शक्ति के रूप में हर एक जगह विद्यमान है। जैसे हम देखें जड़ पदार्थ, देखें भूमि, रप, नल, वायु, खम, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, तो ये भी तो भगवान की शक्ति है। हमने लास्ट क्लास में देखा कि भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं, याद है किसी को, थ्री कैटेगरीज, एक बहिरंगा, एक अंतरंगा और एक तटस्थ न्यूट्रल। तो जो बहिरंगा है वो है ये मटेरियल एनर्जी, तो वो भी भगवान की शक्ति है। तो इस दृष्टि से ये भौतिक जगत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं एक दृष्टि से भगवान ही है, क्योंकि भगवान की शक्ति, और भगवान जहां शक्तिमान है वहां शक्ति होगी ही होगी, अभिन्न है, वी कैनॉट सेपरेट दिस टू। तो उस दृष्टि से भगवान हम कह सकते हैं अपनी शक्ति के रूप में भगवान हर जगह व्याप्त हैं। ये है भगवान का निराकार रूप, निराकार कहना भगवान को, कि भगवान निराकार, भगवान हर जगह है। तो हम जब कहते हैं कि भगवान हर जगह है तो उसका मतलब ये है, पहला, एक तो भगवान पर्सनल परमात्मा रूप में हर जगह है, सेकेंड, भगवान की ही सब शक्तियां हैं, चाहे वो जीव है, चाहे वो भौतिक प्रकृति के ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर है, ये सभी भगवान की शक्ति है। इसलिए इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि ये भगवान ही है। जैसे सूरज जब निकलता है, हमारे कमरे के अंदर सूरज का प्रकाश आता है, तो कभी कभी वैसा बोलते हैं सूरज आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो सूरज ग्रह है वो यहां हमारे कमरे में आ गया, लेकिन सूरज का प्रकाश यहां आ गया, और प्रकाश सूरज से अभिन्न है। जब प्रकाश आया तो इसका मतलब है कि सूरज आ गया है आसमान में, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि सूरज आ गया। लेकिन फिर भी डिफरेंस समझना जरूरी है कि सूरज आ गया का मतलब यह नहीं है कि अभी सूरज वहां नहीं है आसमान में, सीधा आपके रूम में आ गया, इसका मतलब यह नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान जो सभी जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापी, जब हम कहते हैं भगवान को, तो उसका अर्थ ये दो तरीके से है, कि भगवान पर्सनल परमात्मा रूप में सब जगह है, और सेकंड, भगवान अपनी शक्ति के रूप में सब जगह विद्यमान है। लेकिन इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि भगवान का फिर अपना कोई एक अलग अस्तित्व नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब हम बोलते हैं भगवान सभी जगह व्याप्त हैं तो हमें लगता है कि भगवान का कोई अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं है, फिर ही इज डिसॉल्वड हिमसेल्फ इनटू एवरीथिंग, उसका अर्थ ऐसे नहीं लेना चाहिए। जैसे सूरज का प्रकाश सभी जगह है, बट स्टिल सूरज अपने आप में अलग एक अस्तित्व रखता है, उसी प्रकार से भगवान जो फीचर है उनका अपना अलग अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में है, और वो अपनी शक्ति के द्वारा सभी जगह व्याप्त है। तो ये ब्रह्म है और परमात्मा है और भगवान है। तो यदि हम भगवान को जान लेते हैं, यानी जिनका षड ऐश्वर्य पूर्ण, हमने जब देखा षड ऐश्वर्य पूर्ण साक्षात, जिनका सच्चिदानंद विग्रह साक्षात सच्चिदानंद रूप है, उनको जान लेते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली परमात्मा को भी जानते हैं, हम ऑटोमेटिकली ब्रह्म रूप को भी जानते हैं। दैट इज द परफेक्शन ऑफ नॉलेज। भगवान को पूर्ण रूप से जानने का जो लेवल है, दैट इज नोइंग षड ऐश्वर्य पूर्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान को जानना, परम सत्य को पूर्ण रूप से जानना है। ब्रह्म जानना, ब्रह्म के स्तर का ज्ञान, वही भगवान को आंशिक रूप में जानना है। इसी प्रकार से परमात्मा रूप को भी जानना, उसी भगवान को आंशिक रूप में जानना है। तो ये तीन ग्रेड्स हैं भगवान को समझने के। इसीलिए तो इस बैकग्राउंड के साथ आज हम डिस्कशन शुरू करते हैं, आत्मा क्या है। तो पहले एक साधारण दृष्टि से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जनरली साइंस बैकग्राउंड से हैं, या तो कुछ हमारे कॉलेजेस में हमने सब पढ़ा है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारी अभी तक अप्रोच ऐसी रहती है कि जब तक हम किसी को देखते नहीं हैं या साइंसेस से परसीव नहीं करते हैं, या हमारी समझ में नहीं आता है जब तक बुद्धि से, तब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं आसानी से। तो कई बार ऐसा प्रश्न आसानी से किया आता है कि आत्मा को कैसे देख सकते हैं यदि आत्मा है तो। आत्मा है, इसका प्रूफ क्या है? तो जो चेतना है जीव के अंदर, जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, वो सिम्टम है आत्मा का। जैसे अगर शरीर के अंदर बैक्टीरिया चला जाए तो हम बैक्टीरिया नहीं देख रहे हैं, पर बैक्टीरिया की वजह से फीवर जो देख रहे हैं, उस फीवर को देखने से हम जान सकते हैं कि बैक्टीरिया अंदर है, भले ही हम बैक्टीरिया देखें ना देखें, सिम्टम से हम जान सकते हैं कि वो अंदर है। सूरज का प्रकाश आ गया तो सूरज को देखें ना देखें, लेकिन पता लग गया कि सूरज है, आ गया आकाश में। तो उसी प्रकार से कॉन्शियसनेस वो चीज है, चेतना वो चीज है जिसकी उपस्थिति से हम समझ सकते हैं कि आत्मा है। जब व्यक्ति के अंदर चेतना खत्म हो जाती है तो हम कहते हैं चला गया। कौन चला गया? जिसकी वजह से चेतना थी वो चला गया, पास्ड अवे। हर लैंग्वेज में ये यूज किया जाता है मरने के टाइम में, मरण जो व्यक्ति मृत है, एक देह पड़ा है, एक मृत और एक जीवंत, दोनों में क्या अंतर है? शरीर वहीं का वहीं है, एक में चेतना है एक में चेतना नहीं है। हम कहते हैं पास्ड अवे, ही हैज गॉन अवे, देह अंतरण, उसने देहांतर कर लिया, ही हैज गॉन अवे, ही हैज पास्ड अवे। सो हु हैज पास्ड अवे? दैट इज दैट आत्मा जो उस कॉन्शियसनेस का स्रोत था, जिसके वजह से वो कॉन्शियसनेस। अभी साइंटिफिक वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये केवल मैटर का फंक्शन है, ये आत्मा का फंक्शन नहीं है। ये ऐसा नहीं कि मैटर के अलावा कुछ एक अलग आइडेंटिटी है, नॉन मैटर आइडेंटिटी, जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस है, बल्कि कॉन्शियसनेस का जो कारण है वो है केवल शरीर, भौतिक तत्व का ही मिश्रण। आई थिंक इट्स गेटिंग क्लियर। तो ये दो विचारधारा है, एक कि आत्मा की वजह से चेतना है और दूसरा कि केवल शरीर की ही भौतिक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से ही चेतना प्रदर्शित हो रही है। तो अभी इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा विचार करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गहरे समझने के लिए। तो अगर हमें श्रद्धा ही नहीं होगी कि हम आत्मा हैं, हम डिफरेंट हैं, तो ये सब प्रोसेस हम फॉलो ही नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। अगर हम अल्टीमेटली अंदर ये समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली आत्मा कुछ है नहीं, ये सब शरीर ही है सब, और सब खत्म होकर सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो साइंटिस्ट लोगों की थ्योरी है उसके अनुसार डेथ मीन्स एवरीथिंग इज फिनिश्ड फॉरएवर, देयर इज नो कर्मिक रिएक्शन, कर्मा के रिएक्शन, पुनर्जन्म इत्यादि कुछ है ही नहीं, सब खत्म मीन्स खत्म। तो अगर ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं तो तुरंत लाइफ का पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर हम ये मान लें कि शरीर खत्म होने का, सब कुछ खत्म हो गया, तो आप जीवन में कोई अल्टीमेट हेतु है ही नहीं, जियो, खाओ पियो मौज करो, फिर उसके अलावा और कुछ सोच नहीं सकते हम। यदि हम ये सोच लें कि जीवन में मृत्यु के बाद कुछ और नहीं है, तो फिर खाना पीना मजा करना इसके अलावा और कुछ नहीं एम रखा। लेकिन यदि हम ये विश्वास करते हैं, ये जानते हैं, समझते हैं कि नहीं हम आत्मा हैं और ये शरीर तो केवल उसका एक पहनावा है और आत्मा अलग शरीर धारण करेगा, तो हम बहुत केयरफुल हो जाएंगे कि हम कहां जाने वाले हैं नेक्स्ट लाइफ में, कौन सा शरीर मिलने वाला है, फिर हम केयरफुल हो जाएंगे। इसलिए ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गहराई से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे भी उदाहरण लें, साइंटिस्ट कहते हैं कि सब मैटर की वजह से ही सब मैनिफेस्ट हो रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं, ये माइक से मेरी आवाज यहां माइक में जा रही है और फिर ये लीड के थ्रू उस एम्पलीफायर में जा रही है। तो एक साधारण बच्चा से पूछें आवाज कहां से आ रही है, तो वो क्या उत्तर देगा? एम्पलीफायर से आ रही है। तो ये बहुत आसान है इसको समझना कि आवाज एम्पलीफायर से आ रही है, इट्स मच मोर इजियर। छोटा बच्चा होगा तो उसको बोल आवाज कहां से आ रही है। अभी तो आप देख रहे हैं मेरे को, मान लीजिए मैं कहीं दूसरे रूम में हूं या रिमोट सिस्टम है, केवल एम्पलीफायर लगा हुआ है रूम में, तो स्पष्ट है, बच्चा सोचेगा इसके अंदर आदमी है, यानी आवाज इसके अंदर से आ रही है, ये स्पीकर इज द कॉज, कारण क्या है आवाज आने का? स्पीकर। लेकिन हमारा यदि ज्ञान थोड़ा डेवलप्ड है साइंस में, तो हम जान सकते हैं कि एक्चुअली एम्पलीफायर इज नॉट द अल्टीमेट कॉज, आवाज आने का अल्टीमेट कॉज वो एम्पलीफायर नहीं है, एम्पलीफायर एक में एक वायर कनेक्टेड है और वायर में स्पीकर है, तो एक्चुअली ये स्पीकर से आ रही है, आई मीन माइक से। पर और फर्दर जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, एक्चुअली माइक भी अपने आप में कुछ नहीं है, वो मैं बोल रहा हूं, मैं मतलब कौन? वो टंग और लिप्स, उससे वोकल कोर्ड से आवाज निकल रही है, हायर और नेक्स्ट लेवल पे गए, वोकल कोर्ड से निकल रही है। हाँ ठीक है, आवाज का स्रोत क्या है? वोकल कोर्ड। पर क्या वोकल स्रोत अल्टीमेट कॉज है? एक मृत शरीर में वोकल कोर्ड होता है, लेकिन उस वोकल कोर्ड से आवाज नहीं निकलेगी, तो वो वोकल कोर्ड भी एक मीडियम है, जैसे माइक एक मीडियम है, स्पीकर एक मीडियम है, उसी प्रकार से हमारा वोकल कोड भी एक मीडियम है। ऐसे हम लास्ट 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 जाएंगे, वहां आत्मा आएगा। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना, क्योंकि जब तक हमारा ज्ञान गहराई तक नहीं है, जैसे बहुत सारे मीडियम है, उस मीडियम के थ्रू हम कुछ देख रहे हैं, तो हम देखने में पता लगेगा कि हाँ ये बाहर वाले मीडियम से आ रहा है, पर हम साइड में देखेंगे तो देयर आर 10 मीडियम्स, 10 लेयर्स, एंड अल्टीमेटली बियॉन्ड दिस 10 लेयर्स दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो ये गलती कर रहे हैं साइंटिस्ट कि वो केवल इस शरीर को देख करके बोलते हैं कि ये जो है आवाज आ रही है, जो कॉन्शियसनेस है वो मैटर से आ रही है। पर देखिए, यदि हमें ये प्रूव करना हो कि आवाज का जो अल्टीमेट कारण है वो केवल स्पीकर है, यदि इफ समबडी वांट्स टू से, ही वांट्स टू प्रूव कि यही केवल स्पीकर है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसको ऐसे एक स्पीकर बनाना चाहिए अपने आप सेपरेटली, सब कुछ सिस्टम, और जैसे ही वो असेंबली पूरी हो उसके अंदर से आवाज आनी शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब केवल ऐसा कहना आसान है कि स्पीकर में से आ रही है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि देखो स्पीकर में से आ रही है, हमने एक ऐसा असेंबली बनाई, एग्जैक्टली सेम असेंबली बनाई और तुरंत उसमें से आवाज आनी शुरू हो गई। दैट कैन गिव अस अ हिंट दैट मे बी इट इज ट्रू, अदरवाइज जस्ट कहने से काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार से यदि हम ये कह रहे हैं कि केवल शरीर से कॉन्शियसनेस हो रही है, तो फिर उस मृत शरीर में दोबारा से वो केमिकल रिएक्शन डाल के यदि हम उसको दोबारा से बोलता कर दें, देन वी कैन से फॉर श्योर कि यस आत्मा कुछ नहीं है, केवल शरीर, देखो केमिकल जो कम था, ये केमिकल कम था, ये केमिकल डाला तो आदमी जिंदा हो गया। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक इट इज नॉट कॉल्ड प्रूफ। तो इसलिए वो उनकी थ्योरी अभी तक केवल हवा में है। फिर एक आर्ग्यूमेंट वो लोग करते हैं, अगर हम एम्पलीफायर का वॉल्यूम कम करते हैं तो आवाज कम हो जाती है। तो कहते हैं देखो ये एम्पलीफायर से आवाज आ रही है, एम्पलीफायर की कंडीशन भी डिपेंड कर रहा है कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि हमने वॉल्यूम कम कर दिया तो आवाज आनी बंद हो गई, या एम्पलीफायर खराब हो गया तो आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन ये प्रूफ नहीं है कि आवाज का स्रोत केवल एम्पलीफायर है, क्योंकि एम्पलीफायर डेफिनेटली एक मीडियम है। इसलिए एम्पलीफायर की जो भी कंडीशन होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आवाज प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो अपने आप में प्रूफ नहीं है कि यही केवल एक सोर्स है। जैसे उदाहरण लें, आप एक कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, आपने अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम किया अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, उसमें सब डाटा फीड कर दिया आपने सब। मान लीजिए आपका कंप्यूटर बिगड़ जाता है तो क्या उससे आप इफेक्ट होंगे? आपने सब अपना डाटा उसके अंदर फीड किया हुआ था तो आपकी जो वर्किंग है डे टू डे वर्किंग वो इफेक्ट होगी, क्योंकि नाउ यू कैनॉट टेक आउट द डाटा, यू कैनॉट वर्क विद दैट, आप उससे काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अलग हैं उस कंप्यूटर से। यानी साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो ये ब्रेन से ही सब कुछ होता है, ब्रेन इज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसा मानते हैं। अगर हम ब्रेन में वो सेंटर निकाल दें स्पीच सेंटर तो आदमी बोलना बंद कर देता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ब्रेन से ही कॉन्शियसनेस है बाकी और कुछ नहीं है। नहीं, ब्रेन एक मीडियम है जिसके माध्यम से आत्मा कॉन्शियसनेस के सिम्टम रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए ब्रेन डिस्टर्ब होने से आत्मा का जो मैनिफेस्टेशन उसमें डिफरेंट सेंस होगा, स्वाभाविक। जैसे माइक खराब हो जाए तो मैं बोलता रहूंगा पर फिर भी आवाज नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बोलने वाला तो अलग है इस माइक से, इस सिस्टम से। लेकिन मैं डिपेंडेंट हो गया हूं इस माइक और इस एम्पलीफायर के ऊपर, इसलिए वो इफेक्ट कर रहा है। पर तो इस तरह से, इज इट क्लियर, एनी क्लियर? तो इस दृष्टि से हमें समझे कि इस पूरी बॉडी मैकेनिज्म के पीछे गहराई में हम जाएं तो हम आत्मा हैं। और इसको हम बहुत आसान एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कैसे हम आत्मा है शरीर नहीं है। भगवान बताते हैं, क्या आप याद कर सकते हैं आज से 10 साल पहले का कोई अनुभव आप याद कर सकते हैं? 10 ईयर्स बैक याद कर सकते हैं कोई अनुभव? कोई आपको बीमारी हुई हो 10 साल पहले, अभी आप 2 मिनट के लिए उसको बीमारी को याद करें, ओ पैर में चोट लगा था, एक्सीडेंट हुआ था, कितना दर्द हुआ था, आपको वो एक्सपीरियंस, वो आप अनुभूति अभी भी ला सकते हैं। लेकिन हमारे मॉडर्न साइंस के अनुसार 7 साल के अंदर हमारे शरीर में एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं रहता जो 7 साल पहले था, नॉट ए सिंगल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है, सब बदलते रहते हैं, तो एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है। तो शरीर बना है मॉलिक्यूल्स से, तो यानी 7 साल के अंदर तुम्हारा शरीर पूरा बदल गया है। और यदि आप अपना फोटो देखें 10 साल पहले का, या और थोड़ा पहले जाएं 20 साल पहले का, बचपन का 1 साल का देखें, तो आपको पहचान में भी नहीं आएगा कि ये आप हैं। यानी एक्चुअली आप बदल, शरीर बदल चुका है आपका, लेकिन आप वही हैं, आपको अभी भी आप वही, आपको याद है 10 साल पहले मैं ऐसा था, 10 साल पहले मैं वहां रहता था, आज मैं यहां रहता हूं, 10 साल पहले मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा था, आज मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तो वो जो पर्सन जो एक्सपीरियंस कर रहा है अपने शरीर को, इस संसार को, वो एक्सपीरियंस करने वाला व्यक्ति ही इज द सेम। शरीर बदल रहा है, समय बदल रहा है, पर जो एक्सपीरियंस करने वाला, परसीव करने वाला जो व्यक्ति है, ही रिमेन्स द सेम। अगर हम केवल शरीर हैं तो हमारा परसेप्शन, वो इंडिविजुअलिटी, वो कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए ना। जैसे समय बदल रहा है वैसे हम भी बिल्कुल एक बदलते रहने चाहिए, नहीं। जो अनुभव करने वाला व्यक्ति है वो अलग है इस शरीर से। देखने वाला और जो दृश्य है वो दो अलग अलग चीजें हैं। अनुभव करने वाला अलग है और जिस चीज को अनुभव कर रहा है वो अलग है। तो इस साधारण उदाहरण से भगवान समझाते हैं कि समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त न मुह्यति। जैसे इसी शरीर में हम एक बचपन का शरीर धारण किए, उसको बदल करके फिर युवावस्था का शरीर धारण किए और फिर एक वृद्धावस्था का शरीर धारण किए, हम वही रहे, उसी प्रकार से मृत्यु उपरांत, मृत्यु के समय पर क्या होगा, एक और नया शरीर धारण करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है समझने में? जैसे अभी तक चेंज करते आए शरीर, ऐसे ही एक और नया शरीर धारण करेंगे मृत्यु पर। तो इस दृष्टि से भगवान समझा रहे हैं कॉमन सेंस से बिल्कुल, कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो फिर ये जानने के बाद कॉमन सेंस से आज हमारे मॉडर्न साइंस से भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन से भी आज हिंट मिल रहा है कि वो भी लोग भी समझ रहे हैं। हम तो समझते हैं ही, जो शास्त्र जानते हैं उनको तो कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। वो तो भगवद्गीता का पहला श्लोक ही, फर्स्ट स्टार्टिंग नॉलेज ये है, अर्जुन तुम आत्मा, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। भगवद्गीता शास्त्र का ABCD है और उस ABCD का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का ज्ञान है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जो साइंटिस्ट इतना स्टडी करके आज इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं वो ऑलरेडी शास्त्र का बिल्कुल बेसिक ज्ञान है। तो एक है डॉक्टर सुबोन जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस पे एक बुक लिखी है। तो क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनको रिससिटेशन करके प्रयास किया जाता है कि वो वापस कॉन्शियस लेवल पे आ जाए। तो ऐसे केसेस का उन्होंने स्टडी किया कि वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए थे, उनकी जो ब्रेन वेव्स थी फ्लैट दिखा रही थी EEG के अंदर। उनसे पूछा गया कि जब आपको रिससिटेशन चल रहा था तो आपको क्या अनुभूति हो रही थी, तो उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स ने बिल्कुल सटीक वर्णन किया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा था, हम देख रहे थे कि हमको यहां ले जाया जा रहा है, जैसे हम शरीर से निकल करके देख रहे थे, ऐसा सब एक्सपीरियंस बताया, हमको ये मशीन पे लगाया गया फिर हमको वहां ले जाया गया। एक्चुअली वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते होने चाहिए क्योंकि वो अनकॉन्शियस थे मेडिकली, उनका ब्रेन वेव्स फ्लैट था, वो अनकॉन्शियस थे, लेकिन हाउ दे कैन टेल ऑल दिस थिंग्स कि ऐसा ऐसा हो रहा था। तो डॉक्टर सोबोन लिखते हैं, इट अपीयर्स टू मी दैट एट द टाइम ऑफ डेथ समथिंग स्प्लिट्स फ्रॉम द ब्रेन विच मे बी वॉट द मेनी रिलीजन्स बिलीव एज सोल। मृत्यु के समय में मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेन से कुछ चीज अलग होती है, जो हो सकता है बहुत सारे धर्म जिसको मानते हैं सोल वो हो। तो ग्रेजुअली दे आर नाउ कमिंग टू दिस कंक्लूजन। सेकेंड है प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस, पूर्व जन्म की याद। तो उसमें डॉक्टर स्टीफेंसन एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक प्रोफेसर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। तो उन्होंने स्टडी किया और एक बुक लिखा तो उन्होंने एक बुक लिखा 20 प्रूव्ड केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन, यानी कि कई बार फ्रॉड होता है, वो सब फ्रॉड वगैरह को निकाल करके एक न्यूट्रल साइंटिस्ट ने स्टडी करके ऐसे एक बुक लिखा है 20 प्रूव्ड केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन, यानी कि ऐसे केसेस जिसमें उनको पुनर्जन्म का याद था। तो वो पॉसिबल तभी है जब कोई चीज एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो रही है, यानी कि कॉन्शियसनेस का जो सोर्स है वो भौतिक शरीर नहीं है, इसके अलग एक आत्मा है जो स्पिरिचुअल क्वालिटी की है, भौतिक नहीं है। तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अभी हम जाएंगे कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि आत्मा क्या है, कौन है, इस भौतिक जगत में कैसे आती है, भगवान के साथ उसका क्या संबंध है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता बताते हैं आत्मा के विषय में, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जो सभी आत्माएं हैं ये मेरे अंश हैं, ममैव अंशो, दे आर माई पार्ट एंड पार्सल। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत, जीव भूत मीन्स लिविंग एंटिटीज, सनातना, और उनका गुण कैसा है, सनातन। सनातन मीन्स उनका कभी बर्थ नहीं होता और उनका कभी डेथ नहीं होता, दे एग्जिस्ट ऑलवेज अंश रूप में। जो ये आत्मा है ये ऐसा नहीं कि आत्मा पहले नहीं थी, कभी नहीं थी, आत्मा हमेशा से थी। भगवान जैसे सनातन है ऐसे ही आत्मा भी सनातन है, और ऐसा भी नहीं होगा कि अब ये नहीं रहेंगी, इनका इंडिविजुअलिटी, इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी आत्मा की, नहीं। सनातन मतलब ऑलवेज एग्जिस्टिंग, जैसे भगवान ऑलवेज एग्जिस्टिंग ऐसे आत्मा भी ऑलवेज एग्जिस्टिंग। तो मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, एट प्रेजेंट जो हम आत्माएं हैं, मन षष्ठानी इंद्रियानी, छह इंद्रियों के साथ, पांच ज्ञानेंद्रियां आंख इत्यादि और एक छठी इंद्रिय मन, मन षष्ठानी इंद्रियानी, इन छह इंद्रियों के साथ प्रकृति स्थानी, इस भौतिक प्रकृति में स्थित होके करशती, स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। आत्मा मेरे अंश है और एट प्रेजेंट वो इस भौतिक प्रकृति में आकर के मन और इंद्रियों के साथ दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू एग्जिस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डार्विन ने बोला। तो आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। कैसा अंश है? सनातन, इटर्नल। ऐसा नहीं कि एक समय था जब आत्मा नहीं थी, सब एक ही था, होमोजीनियस, उसमें से एक टुकड़ा अलग हुआ जो आत्मा बन गया और मुक्ति के बाद वो टुकड़ा वापस जाकर के उसी एक होमोजीनियस सब्सटेंस में मिल जाएगा। यह शास्त्र का कंक्लूजन नहीं है। यह जो आत्मा है यह परमानेंट इटर्नली सेपरेटेड है। यह हमारी बद्ध अवस्था या भौतिक जगत का की बात नहीं है कि हम इंडिविजुअल हैं और मुक्त होने पर अपनी इंडिविजुअलिटी समाप्त कर देंगे और वापस उसी एक होमोजीनियस सब्सटेंस में घुल मिल जाएंगे। क्योंकि भगवद गीता में बताया भगवान ने कि जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस है, स्पिरिट है, वो इनसॉल्युबल है, अक्लेद्यो, इनसॉल्युबल है। तो हम उसको ऐसा नहीं लेंगे गैसियस मिक्सचर की तरह से कि एक गैस एक कंटेनर में, दूसरी गैस दूसरे कंटेनर में, वो कंटेनर को बीच में से तोड़ दिया जाए तो दोनों गैस होमोजीनियस मिल जाती है। आत्मा ऐसी होमोजीनियस नहीं है। जो स्पिरिट है, आत्मा की अपनी अलग आइडेंटिटी है और परमात्मा भगवान की अपनी अलग आइडेंटिटी है और दोनों ही सनातन रूप से हमेशा से बनी रहती है। ये एक बहुत वाइडली स्प्रेड मिसकंसेप्शन है कि मुक्ति का मतलब है आत्मा की एग्जिस्टेंस खत्म होकर के वो एक होमोजीनियस स्पिरिचुअल ब्रह्म में लीन हो जाएगी। वो कंसेप्ट का शुरुआत कहां से होती है वो हम देखें, वेरी इंटरेस्टिंग। इस भौतिक जगत में हम सभी का एक एक इंडिविजुअल रूप है। जो लोग थोड़ा सा बुद्धिमान हैं, वो लोग धीरे धीरे अनुभव करते हैं कि ये रूप होने की वजह से ही सब प्रॉब्लम है, ये शरीर की वजह से ही सब प्रॉब्लम है, जितने भी कष्ट होते हैं ये रूप की वजह से होते हैं, अगर ये रूप नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए उनके लिए बहुत आसान है ऐसा इच्छा करना या मानना कि हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। जैसे आदमी सुसाइड क्यों करता है, वो बहुत परेशान हो जाता है अपने जीवन से, वो अपने जीवन को मेंटेन नहीं करना चाहता, ही कमिट सुसाइड। तो उसी तरीके से अध्यात्मवादी आध्यात्मिक स्तर पे सुसाइड करना चाहते हैं। वो ये तो जानते हैं कि शरीर को मात्र मारने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा जो है वो तो अगला जन्म लेगी, इसलिए वो अपने शरीर को नहीं मारते हैं। वो क्या चाहते हैं कि आत्मा ही खत्म हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जड़ से इसको खत्म कर देना। वो कैसे? कि हम भी विलीन हो जाएं, वी डोंट वांट आवर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। तो जो भौतिक भोग कर करके बहुत परेशान हो गए, जो जानते हैं कि भौतिक जगत में भोग नहीं कर सकते, ये सब बहुत कष्टों का कारण है, वो लोग अपनी एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देना चाहते हैं, इसलिए वो उस ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। लेकिन वो हाईएस्ट एग्जिस्ट, हाईएस्ट ट्रुथ नहीं है। हाईएस्ट ट्रुथ है कि हम इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, इस समय हम इस भौतिक शरीर को धारण करने की वजह से ही सब कष्ट ले रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लेकिन हमारी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस प्योर लेवल में आध्यात्मिक जगत में है, जहां पर हम एग्जिस्ट तो करते हैं इंडिविजुअली अपने एक रूप में, पर वो रूप कष्टों का कारण नहीं बनता है, क्योंकि वो जो शरीर है, जो इटर्नल बॉडी है, वो सच्चिदानंद रूप है। वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये सब ट्रबल्स एंग्जाइटीज नहीं होता है। दैट लाइफ एग्जिस्ट, जिसको वो जानकारी नहीं है वो सोचेगा एग्जिस्टेंस को खत्म करना। एक बच्चा बहुत शरारती है तो उसको माँ बाप क्या बोलेंगे? चुप बैठो, शरारत करने से अच्छा है कुछ मत करो, पर कुछ ना करने से अच्छा है कुछ अच्छा करना। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में ये रूप धारण करना बहुत खराब है, इससे अच्छा है कोई रूप ना हो, पर उससे भी अच्छा है कि आध्यात्मिक रूप हो, जिसमें हम नित्य रूप से भगवान की सेवा करके सच्चिदानंद स्वरूप में रह सकें। तो इसलिए रियल मुक्ति, इसकी डेफिनेशन भागवतम में दी है, मुक्तिर हित अन्यथा रूपम स्वरूपेणा व्यवस्थिति ही। वास्तविक मुक्ति क्या है? एट प्रेजेंट जो हमारे ये ऊपर ये शरीर लादा हुआ है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, इट्स आर्टिफिशियल थिंग जो हमने हमारे ऊपर लादी गई है, ऐसे सब आर्टिफिशियल रूपों को छोड़कर अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त करना, वही मुक्ति है। स्वाभाविक स्वरूप, स्पिरिचुअल बॉडी को प्राप्त करना, वही मुक्ति है। तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है, जो बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या आत्मा का रूप है या नहीं? इज आत्मा हैविंग ए फॉर्म और नॉट हैविंग ए फॉर्म? अधिकतर लोग यही मानते हैं, इट्स लाइक ए प्रकाश, कुछ भी नहीं। नहीं कुछ भी नहीं तो फिर एग्जिस्टेंस हम कह रहे हैं कि ये सब
प्रकाश भी नहीं है,
क्या है फिर? पॉइंट नॉट टू बी एक्सपीरियंस्ड, नॉट टू बी सीन, ओके, नॉट टू बी सीन, अति सूक्ष्म है। तो शास्त्र के अंदर बताया गया कि आत्मा कितना सूक्ष्म है। अगर हम अपने बाल के अग्रभाग को 10,000 बार डिवाइड करें, शत भागस्य शत शत और फिर शत शत, 100 100, 10,000 टाइम यदि बाल के अग्रभाग को डिवाइड करें, इतना छोटा कण है ये आत्मा। इसलिए मटेरियली माइक्रोस्कोप से आज तक हमारे पास इतना कोई छोटा, इतना हाई रिजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप नहीं है जो इतने छोटे सब्सटेंस को देख सके। इसीलिए ये जैसा आपने कहा कि हमारी आंखों से वो दृष्टिगोचर नहीं है, हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन आज तक बैक्टीरिया थे, जब तक ल्यूवेनॉइक ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं किया तब तक बैक्टीरिया वो नहीं देख पा रहे थे कोई भी, पर माइक्रोस्कोप डेवलप होने के बाद वो देख पाए कि बैक्टीरिया एक सेल वॉल है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ये है, दे कुड सी दैट। तो मात्र क्योंकि हम अपनी आंखों से एट प्रेजेंट नहीं देख पा रहे हैं, ये अपने आप में तो नलिफाई नहीं करता ना कि इसका कोई रूप नहीं है। एट प्रेजेंट अपनी आंखों से, इन आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। तो आत्मा का जो रूप है, क्योंकि आत्मा भौतिक तत्व नहीं है, इसलिए हम कभी भी भौतिक इंद्रियों से उसे नहीं देख पाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट मैटर। आप कितने बड़े से बड़ा माइक्रोस्कोप ले आइए, उसकी वो केवल मैटर को देख सकता है, उसका जो लिमिटेशन है वो मैटर को देख सकता है। इट कैन नॉट सी द थिंग्स विच आर नॉट मैटर, जो मैटर है नहीं इसको कैसे देखेगा। इसलिए हमें आत्मा दिखती नहीं है। पर जस्ट ये कहने, ये इस तथ्य से कि हम देख नहीं सकते, इट डज नॉट रूल आउट इट्स फॉर्म। ये शरीर को रूप कौन दे रहा है? जब बच्चा गर्भ में होता है तो ओवम और स्पर्म के मिलने से एक होमोजीनियस एक मिक्सचर बनता है, और उस जब तक वो आत्मा अंदर रहती है उससे वो डेवलपमेंट होता है, हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, पूरा रूप बनता है। जब वो आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो वापस ये जो फॉर्म थी धीरे धीरे सड़ने लगती है, और एक दिन सब मिट्टी मिल जाता है, अगेन फॉर्मलेस हो जाती है। यानी ये जो मैटर है शरीर, इसको फॉर्म देने वाला कौन है? आत्मा है। जैसे ये जो मैं कुर्ता पहन रहा हूं, कुर्ता ये बनने से पहले, ये मेरे शरीर के ऊपर आने से पहले एक कपड़ा था, इसका ऐसा फॉर्म नहीं था जैसा अभी है, पर क्योंकि ये शरीर के ऊपर चढ़ाना था इसलिए इसको एक फॉर्म मिला। तो उसी प्रकार से ये सब जो जीव जिनका शरीर, हर एक शरीर का एक रूप है, क्यों? क्योंकि जिस आत्मा के ऊपर वो कवरिंग है उसका रूप है, इसलिए उसके ऊपर ये रूप। लाइक ग्लव्स, ग्लव्स का वो शेप क्यों है? पांच उंगलियां, क्योंकि हाथ में वो पांच उंगलियां हैं। तो आप सोचिए, जो चीज मैटर को रूप दे रही है वो खुद क्यों बिना फॉर्म की होगी? जिसके बिना मैटर कोई रूप का है ही नहीं कहीं भी। मैटर अपने आप में बिल्कुल बिना रूप का होता है। ये जो कालीन बनाया गया, एक लिविंग फोर्स ने इसको रूप दिया, नहीं तो नहीं होता। एक लकड़ी है, लकड़ी को एक हमेशा एक लिविंग फोर्स, ऑलवेज लिविंग फोर्स इज गिविंग शेप टू एनी मैटर। सो विच इज मोर लॉजिकल टू अंडरस्टैंड, क्या ज्यादा रीजनेबल है कि फॉर्मलेस चीज फॉर्म देगी या फॉर्म वाली चीज फॉर्म देगी? दैट इज मोर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो हम समझते हैं कि हालांकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है लेकिन उसका स्पिरिचुअल बॉडी है, इसलिए हम मेटल कंसेप्शन से हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटा इसलिए फॉर्म नहीं है। एक्चुअली तो पॉइंट का भी फॉर्म होता है, पॉइंट का ही फॉर्म होता है, उस दृष्टि से देखें। और वैसे भी देखें तो स्पिरिचुअल है, इसलिए उसका मेटेरियल डायमेंशन कितना भी छोटा क्यों ना हो फिर भी उसका स्पिरिचुअल बॉडी है, इसलिए हम वहां पर मेटल कैलकुलेशन से उसको नहीं कर सकते कि कितना चौड़ा है कितना बड़ा है, बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल। जैसे कि आजकल कंसेप्शन है टाइम डायमेंशन, एक तो हम 3D देखते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, देन आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस्ड दिस 4th डायमेंशन टाइम डायमेंशन, बट एक्चुअली बाय प्रोग्रामिंग बाय कंप्यूटर्स यू कैन गो टू एनी नंबर ऑफ डायमेंशन, एनी नंबर ऑफ डायमेंशन। तो आत्मा इज हैविंग कंप्लीट डिफरेंट डायमेंशंस विच मे नॉट वी कैनॉट परसीव बाय दिस मेटल आइज, लेकिन उसका रूप है वो आध्यात्मिक रूप है, भौतिक नहीं है। तो आत्मा का एक रूप है, अगर आत्मा का रूप नहीं है तो फिर आध्यात्मिक जगत में हम क्या बात कर रहे हैं फिर आध्यात्मिक जगत की? हम कह रहे हैं आध्यात्मिक जगत है वहां वैकुंठ है, अगर कोई रूप नहीं है वहां कोई सेवा नहीं है कोई कुछ नहीं है तो फिर नो। तो आत्मा का रूप है जैसे भगवान का रूप है और हम भगवान के अंश हैं। हम देखें हमारा ये शरीर का रूप है क्योंकि हमारे पिताजी का रूप है, उसके ऊपर जो अंग का रूप है, भगवान मतलब आदि पिता। तो अगर हम ऐसे एक एक करके जाएंगे तो फिर क्यों उनका रूप नहीं होगा जो हमारा आदि पिता है? तो उनका भी रूप है, भगवान का भी रूप है, आत्मा का भी रूप है, लेकिन वो रूप भौतिक नहीं है। इट इज नॉट मेड अप ऑफ अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर, इट इज स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल सब्सटेंस। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वालिटी है आत्मा की, आत्मा का रूप है। सेकेंड, आत्मा नित्य है, अविनाशित तद्विद्धि येन, अविनाशित तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, जो इस पूरे शरीर में व्याप्त है वो अविनाशी है। थर्ड, आत्मा जो है वो शरीर बदलता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ये थर्ड। ऐसे ऐसे कीजिए, अच्छा घी नहीं है ना, कोई बात नहीं, ऐसे रहने दीजिए कोई बात, बिकॉज भी फिर डिस्कोर्स में इंटरप्शन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आत्मा का थर्ड क्वालिटी है इट चेंजेस बॉडीज। फोर्थ, इंडिविजुअल है, वो हमने देखा, हम सब इंडिविजुअल है, हम कभी ऐसा नहीं था कि सब एक साथ थे, घुले मिले थे। मेरे मन में जो मेरी कॉन्शियसनेस है आपकी कॉन्शियस अलग है, आपकी जो फीलिंग्स हैं परसेप्शन है और मेरी फीलिंग परसेप्शन अलग है। कोई जगत में दो आदमी एक ही विचारधारा के नहीं है, सब को अलग अलग है ना, इंडिविजुअल, एक ही घर में जन्म लेंगे, एक ही एनवायरमेंट, एक ही माता पिता, फिर भी डिफरेंट। इतनी वैरायटी है तो हम कैसे मान सकते हैं कि सब होमोजीनियस है, सब एक सा है? अगर मेरा आध्यात्मिक विकास हो रहा है तो आपका भी होना चाहिए फिर साथ साथ, यदि हम एक ही हैं तो। यदि केवल हम उसको एक ड्रीम जैसे कुछ लोग मानते हैं, ये केवल हमारी गलत धारणा है कि हम अलग अलग हैं, बाकी सब एक ही है, सब एक ही है, तो मेरा आध्यात्मिक विकास से आपका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए? नो। तो आत्मा जो है वो इंडिविजुअल है और ये हमेशा इंडिविजुअल रहती है, मुक्ति के बाद भी, मुक्ति से पहले भी, क्योंकि इंडिविजुअल थी। तो अभी प्रश्न ये उठता है एक और महत्वपूर्ण, जब हम कह रहे हैं कि अंश, तो आत्मा की उत्पत्ति या आत्मा एक तरीके से उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि आत्मा हमेशा रहती है, इसलिए ये जो शब्द है उत्पत्ति, क्रिएशन, ये एक्चुअली आत्मा के संबंध में या भगवान के संबंध में यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट क्रिएटेड, दे आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग। क्रिएशन केवल भौतिक जगत के बारे में होता है, आध्यात्मिक जगत में ये वर्ड क्रिएशन यूज नहीं होता है, क्योंकि वहां ऑलवेज एग्जिस्ट इटर्नली। तो वहां पर आत्मा भगवान है और भगवान की तटस्थ शक्ति है, न्यूट्रल एनर्जी है, यह आत्मा भगवान है और यह आत्मा है। तो उन दोनों का संबंध क्या है? भगवान अपनी ये शक्ति का विस्तार क्यों करते हैं, यह प्रश्न उठता है, इस शक्ति का प्रयोजन क्या है? तो इसके लिए उत्तर बताया गया है, एको बहुश्याम, भगवान जो उनकी नित्य शक्ति है आत्मा, जो उन्हीं का अंश है, भगवान उस शक्ति का विस्तार करते हैं अपने आनंद वर्धन के लिए, फॉर एनहैंसिंग हिज आनंद, क्योंकि भगवान का हमने गुण देखा आनंदमयो भ्यासात, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज ही ऑलवेज वांट्स टू इंक्रीज हैप्पीनेस, ये गुण है। तो आप देखिए, यदि जैसे ये पूरा घर है, जैसे आपकी फैमिली नहीं है, आपको कब अच्छा लगता है, जब फैमिली आए या जब फैमिली नहीं आए? जब फैमिली आए तभी अच्छा लगता है, जब साथ में होते हैं, जब छुट्टी पे आते हैं तभी अच्छा। नहीं, आई मीन एक ऑर्डिनरी सेंस में बात करें तो जब हम किसी के साथ रिलेशन रखते हैं इससे हमको आनंद मिलता है। इफ सपोज हमारा किसी रिलेशन नहीं है, एक आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचने में हमारा भगवान से रिलेशन हो जाए तो दूसरी बात है, पर रिलेशन, किसी के साथ संबंध, वो बहुत महत्वपूर्ण है आनंद के लिए। इसलिए भगवान अपने आनंद वर्धन के लिए ये जीवों को, जीव जो शक्ति है उसको मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकाशित करते हैं, फॉर हिज इंक्रीजिंग हिज आनंद। तो भगवान और जीव का जो संबंध है उस रिलेशनशिप में रह करके भगवान का आनंद बढ़ता है, और जब जीव उस आनंद, उस रिलेशन में कार्य करते हैं तो उनका आनंद भी बढ़ता है। जैसे एक सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है तो स्वामी भी की संतुष्टि बढ़ती है और इंटर्न सेवक की संतुष्टि बढ़ती है। तो ये एक रेसिप्रोकेशन है भगवान और जीवों के बीच में, देयर इज अ रेसिप्रोकेशन ऑफ लव। आध्यात्मिक जगत में जो संबंध है हमारा, जो स्वामी और सेवक का संबंध है वो भौतिक जगत जैसा नहीं है, वहां प्रेम का संबंध है, वहां जीव भगवान की सेवा करते हैं आउट ऑफ लव। भौतिक जगत में हम सेवा किस लिए करते हैं? पैसे के लिए या किसी अन्य चीज के लिए। और स्वामी भी दास से केवल काम लेते हैं और उनको उतना पगा दे छुट्टी, वहां लव नहीं होता है भौतिक सेवाओं में। पर आध्यात्मिक जगत में जो भगवान और जीव का संबंध है वो प्रेम का संबंध है, और वो प्रेम का आदान प्रदान से दोनों का आनंद वर्धन होता है। इस तरह से भी हम देखें तो अगर हम जीव ये चाह रहे हैं कि हम मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति का मतलब ये समझते हैं भगवान हम अपनी एग्जिस्टेंस नहीं चाहते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो गए अपने एग्जिस्टेंस से, अभी हम कोई एग्जिस्टेंस नहीं चाहते हैं, हमको जीरो बना दो, हमको विलीन कर दो, अगर जीव ऐसा हट करता है तो भगवान उसको अलाउ करते हैं। किस तरह से अलाउ करते हैं? अपनी ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का उसको चांस देते हैं, जिसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। यह भी एक प्रकार की संभावना है, इट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि हम विलीन हो सकते हैं भगवान से निकलने वाले प्रकाश में। जो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जो लोग जानते नहीं है कि इटर्नल लाइफ है आध्यात्मिक जगत में, वो लोग चाहते हैं कि हम बस विलीन होना चाहते हैं, तो भगवान ऐसे जीवों की इच्छा भी पूरी करते हैं, अपने प्रकाश में उनको विलीन करने का चांस देते हैं। पर भगवान की ये इच्छा नहीं है या ये हाईएस्ट लेवल नहीं है। हाईएस्ट लेवल तो है कि आप अपने इस गलत धारणाओं को छोड़कर, इस भौतिक शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर प्राप्त करके दिव्य शरीर में भगवान के धाम में भगवान के साथ वापस उसी पुनः प्रेम के संबंध में भगवान के साथ रहें। दिस इज अल्टीमेट परफेक्शन। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं, जिनको जानकारी नहीं है, ये जो चाहते हैं विलीन होना, ओके दे आर अलाउड, लेकिन वो परमानेंट पोजिशन नहीं है। वो भी जीव का स्वाभाविक गुण है भगवान की सेवा करना। जब तक वो वापस इस सिचुएशन पे नहीं पहुंचता तब तक वो किसी भी अन्य पोजीशन पे परमानेंटली नहीं रह सकता। बहुत ही जगत में हम देख लें, कोई सोचता है मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा संतुष्ट हो जाएगी, अमीर बन जाता है फिर भी नो, अभी भी कुछ कमी है। क्यों? जब तक जीव भगवान की सेवा में नहीं आता वापस तब तक असंतुष्टि रहेगी ही रहेगी। तो ब्रह्मलीन होने में भी भगवान की सेवा तो नहीं हुई, इसलिए वो लेवल भी परमानेंट लेवल नहीं है। इसलिए कहा गया है करोड़ों करोड़ जन्मों तक वहां रहने के बाद वहां बहुत आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि भौतिक जगत की समस्या नहीं है, इसलिए बहुत आनंद है। सिर दर्द कर रहा था या हम बीमार थे, अभी बीमार बुखार चला गया तो बहुत अच्छा लगता है। पर उससे भी अच्छा लगता है जब अपनी स्वस्थ अवस्था में खाना शुरू करें, दैट इज हायर। तो उसी प्रकार से ब्रह्मलीन होना एक बहुत आनंद है क्योंकि भौतिक संकट भौतिक जंजाल खत्म हुआ। पर उससे भी आगे है जाना, उससे आगे जाना है अपने दिव्य स्वरूप में भगवान की सेवा प्रारंभ करना है। तो इसलिए यहां पर हम जो बताना चाह रहे हैं कि अल्टीमेट परफेक्शन क्या है, भगवान के अलग अलग स्तर, हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध क्या है। जैसा हमने उदाहरण दिया था शरीर का अलग अलग अंग है, तो हम अंग हैं, अंग जो है उनका कार्य है कि वो शरीर की सेवा करें तब उनको पोषण मिलेगा। उसी प्रकार से ये जो अंग है अलग अलग आत्मा, जब ये भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं तब स्वाभाविक रूप से आनंदित रहते हैं, और यही एकमात्र तरीका है आनंदित रहने का। तो ये बेसिक नॉलेज है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। काफी फिलॉसफी है, थोड़ा सा ये स्ट्रेन भी पड़ सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारे नए नए पॉइंट्स हैं एकदम से आना। थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि इट्स लाइक टू मच पॉइंट्स ना। तो बेसिकली थोड़ा रिवाइज करें, क्या हमने देखा कि परम सत्य भगवान और उनकी अनेक अनेक शक्तियां, शक्तियों के तीन प्रकार, मेटेरियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और तटस्थ मार्जिनल एनर्जी। मार्जिनल एनर्जी तटस्थ शक्ति है वो हम जीव, बाह्य शक्ति है वो है ये भौतिक संसार, एट एलिमेंट्स, अर्थ वाटर फायर ईथर, अर्थ वाटर भूमि अपनल वायु खम, पांच तत्व, और उसके ऊपर सूक्ष्म तत्व माइंड इंटेलिजेंस ईगो, ये भी भौतिक एलिमेंट्स हैं। दे आर नॉट, हम माइंड भी नहीं हैं, हम शरीर तो है ही नहीं, हम माइंड भी नहीं हैं, हम इंटेलिजेंस भी नहीं हैं, हम उसके बियॉन्ड आत्मा हैं। ये माइंड इंटेलिजेंस ईगो ये सूक्ष्म शरीर है, और ये पंचभूत का बना हुआ भौतिक स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी। इन दोनों के अलग है आत्मा, ये दोनों शर्ट और शर्ट के ऊपर कोट ऐसा है, दो शरीर, सूक्ष्म शरीर और उसके ऊपर एक और शरीर ग्रॉस, पर उन दोनों के अंदर है आत्मा जो स्पिरिचुअल नेचर की है, जो मैटर नहीं है। जो भगवान का शाश्वत अंश है, जिसका नेचुरल पोजीशन है, संवैधानिक स्थिति है भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा। लेकिन जब हम, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आखिर हमें ये भौतिक शरीर धारण क्यों करना पड़ता है? Why we have to come to this material world from spiritual world? आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में रहते हैं, आज भी आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं खाली है। हम सोच रहे हैं आध्यात्मिक जगत में सब इतने सारे जीव तो यही है, एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में तो अनगिनत जीव है, मुक्त आत्माएं, ऑल लिबरेटेड सोल्स आर देयर, अपनी दिव्य आध्यात्मिक शरीर में भगवान की सेवा कर रहे हैं, दे आर अनलिमिटेड। भौतिक जगत में जीवात्मा वो तो मुट्ठी भर है उस कंपेरिजन में। तो कौन किसको यहां आना पड़ता है? जैसा हमने बताया कि जेल की तरह से है, तो जेल में किसको आना पड़ता है? जो संविधान को पालन नहीं करता। तो जो भगवान की सेवा नहीं करके ऐसी इच्छा करता है कि मैं खुद भगवान से इंडिपेंडेंट होकर के एंजॉय करूं, वो संविधान के विरुद्ध है, हमारी संवैधानिक स्थिति के विरुद्ध है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के विरुद्ध है। ऐसे जीवों को भगवान मौका देते हैं अपनी इन गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कैसे? अपनी माया शक्ति में उनको डाल करके। माया मीन्स मा आया, जो नहीं है उसको सही मानना, इल्यूजन, इल्यूजरी पोटेंसी, वो है बहिरंगा शक्ति, जो माया जो जगत है। इसको माया इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इल्यूजन है, ये इल्यूजन, ये इल्यूजन क्रिएट करती है। जैसे ही जीव इसके संपर्क में आता है, इल्यूजन, जैसे हम अंडर इल्यूजन सोचते हैं, आई एम दिस बॉडी, ये इल्यूजन है। बॉडी के सुख मेरे सुख है, ये इल्यूजन है। ये मेरी जमीन है, इल्यूजन है। ये मेरा घर है, ये इल्यूजन है, स्पष्टता इल्यूजन है, क्योंकि आप तो चले जाएंगे, घर तो वहीं रह जाएगा, मकान जमीन वहीं रह जाएगी, लेकिन फिर भी इतने बड़े इल्यूजन है, सब लड़ते हैं आपस में, मेरा घर मेरी जमीन, खूब लड़ते हैं। अरे भाई आप दोनों चले जाने वाले हो, इल्यूजन, ये इल्यूजन क्रिएट करती है एनर्जी। हाँ, सच वो है कि आध्यात्मिक जगत में सच्चाई है, हम आत्मा है, और ये माया के वजह से जैसे सोच रहे हैं कि हम ये शरीर है, हम ये घर है इत्यादि, हम आत्मा है, हमारे इससे कोई लेन देन नहीं है, हमको, हम भगवान के अंश हैं और भगवान के सेवक हैं, वो सच्चाई है। तो ये भौतिक जगत ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं, हम प्रश्न करेंगे बाद में। हम ऐसा, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम कहें कि हमें घर चाहिए, क्योंकि अभी हमारा शरीर है इसलिए हमारे शरीर की आवश्यकताएं तो हैं, इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि शरीर है ही नहीं। एट प्रेजेंट तो शरीर है, मकान है, सब है, पर वो टेम्परेरी है, अनित्य है, हम नित्य हैं। ठीक है, वो प्रश्न का उत्तर हम लेंगे, या उस पॉइंट पर हम आएंगे बाद में प्रश्न के उत्तर में। तो क्यों आए हैं? हाँ जी, तो स्वाभाविक स्थिति में हम हमेशा आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो हमारा घर है, इटर्नल पोजीशन, वो हमारा घर है, और हमारे नित्य संबंधी इटर्नल रिलेटिव वो हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनके साथ हमारा अलग अलग प्रकार का संबंध रहता है, वेराइटीज। जैसे इस भौतिक जगत में अलग अलग संबंध हैं, वो सब परवर्टेड रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत में इटर्नल रिलेशंस के। ये भौतिक जगत पूरा प्रतिबिंब है एक, जैसे आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ उनके माता पिता का संबंध भी है, उनके सखा का भी है, उनके वाइफ का भी है, ऐसे ही इस भौतिक जगत में वही चीज विकृत रूप में परवर्टेड होकर के यहां डिफरेंट रिलेशंस में मैनिफेस्ट होती है। तो आध्यात्मिक जगत में जीव भगवान के साथ अलग अलग संबंधों में संबंधित हैं, लेकिन क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर वो सभी गुण हैं जो भगवान के अंदर है। इसलिए भगवान का एक जो गुण है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाला गुण, ही हैज हिज इंडिपेंडेंट डिजायर्स, इंडिपेंडेंस, वही गुण हमारे अंदर भी है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, पर छोटी मात्रा में है। हमारी इंडिपेंडेंट डिजायर और भगवान की इंडिपेंडेंट डिजायर एक सी नहीं है। भगवान की इंडिपेंडेंट डिजायर है कि वो जब डिजायर करेंगे तो वो होगी ही, उसको पूरा करने में ही इज इंडिपेंडेंट, इज नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। पर हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो माइन्यूट है। जैसे एक गाय खूंटे से बंधी है, उसकी रस्सी है 5 मीटर, 5 मीटर के दायरे में वो कहीं भी जा सकती है, इतनी स्वतंत्र है उसको, पर पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, 5 मीटर के दायरे के बाहर नहीं जा सकती। तो उसी प्रकार से आत्मा की स्वतंत्रता है पर भगवान की तरह नहीं, यानी वो स्वतंत्र इच्छा कर सकती है पर उस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ही उसको अलाउ करेंगे, परमिशन देंगे, सैंक्शन देंगे, व्यवस्था करेंगे, तभी वो अपनी इन इंडिपेंडेंट डिजायर को पूरा कर सकते, नहीं तो नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट डिजायर का, इंडिपेंडेंस मींस मिसयूज या प्रॉपर यूज, दोनों हो सकता है, वही मतलब इंडिपेंडेंस का। तो जीव जो है अपनी इंडिपेंडेंट डिजायर शक्ति को यूज करके, प्रॉपर यूज करके भगवान की सेवा करता है, और उसका इम्प्रॉपर यूज करके ऐसी इच्छा करता है कि लेट मी बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। जैसे एक बहुत कोई अमीर परिवार का बच्चा है, जब जवान होता है तो उसको कभी लगता है मैं क्यों घर में रहूं पिताजी के साथ, मैं अपना अलग बिजनेस करूंगा, व्हाई शुड आई बी विद हिम। उसी प्रकार से जब हम ऐसी इच्छा करते हैं कि कांट आई बी हैप्पी विदाउट सर्विंग गॉड, कांट आई बी लाइक हिम, वो पॉसिबल नहीं है, पर हमारी ऐसी इच्छा होती है। हम खुद क्यों नहीं भगवान बन जाते हैं, हम क्यों भगवान जैसा भोग नहीं कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, व्हाई शुड आई सर्व हिम। जब ऐसी इच्छा होती है, वहां से तुरंत आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से निकल करके हम तुरंत माया शक्ति के प्रभाव में आते हैं। भगवान के द्वारा हमके माया शक्ति के प्रभाव में डाल दिया जाता है, जिससे कि हम अभी माया में सोचते हैं यस नाउ आई हैव बिकम गॉड, अभी मैं इंडिपेंडेंट बन गया, नाउ आई अभी सब मेरे हाथ में है, ये सब मेरा है, आई एम द भोक्ता, अभी भगवान की जरूरत नहीं है। तो वो सब अभी पॉसिबल है, क्यों, अभी इल्यूजन में आ गए, माया में आ गए। तो भगवान एक तरफ तो हमें मौका दे रहे हैं कि अपनी हम ये जो गलत इच्छा है इनको पूरा करें, और साथ साथ अनुभव करें कि ये सब गलती थी। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, बोलते हैं मम्मी मम्मी हमको भी अपना अलग रसोई बनाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी पेरेंट्स को पता है कि वो भी रसोई नहीं बना सकते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, खिलौने की कढ़ाई, खिलौने की गैस, खिलौने का लाइटर सब ला के देते हैं उनको, और बच्चे जो हैं वो आपस में पूरा जैसे कि नेचुरल है खेलना शुरू करते हैं, सब्जी बनती है, चपाती बनती है, रोटी बनती है, गुड्डे गुड़िया होते हैं, शादी भी होती है, सब होता है, सब काम होता है, सब काम होता है। फिर लेकिन जब भूख लगती है तब फिर वो काम नहीं आती कढ़ाई वाली, तो भूख लगने में मम्मी का जाना पड़ता है, भूख लगी है, हाँ अभी आ जाओ इधर, अभी खेल छोड़ो, अभी इधर आ जाओ, अभी रियल खाना खाओ। तो उसी प्रकार से जब हम ऐसा चाहते हैं तो भगवान एक खिलौना का संसार बना के देते हैं, ये खिलौने की तरह से इल्यूजरी, यहां पर हमको लगता है हाँ सब अच्छा है, अभी भोक्ता बन गया, आई एम एंजॉइंग हेयर, ऐसे कर कर खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, 84 लाख योनियों में खेलते रहते हैं। हम जैसे जैसे इच्छा करते हैं वैसे वैसे कभी हमको ये नॉनवेज खाने की बहुत इच्छा है, ठीक है शेर बन जाओ, उसके रूप में देख लो, या नाउ आई एम एंजॉइंग, फिर दूसरा कोई शरीर, ऐसे अलग अलग प्रकार के, सब प्रकार के एंजॉयमेंट करने के लिए उद्देश्य से हम लोग घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। अल्टीमेटली जब सब करने के बाद फ्रस्ट्रेशन होता है कि सच्चाई क्या है, सभी प्रकार का प्रयास करने के बाद भी अंततः निराशा क्यों, डिससेटिस्फेक्शन क्यों, यहां से प्रारंभ होती है बैक जर्नी। यस, फिर परमात्मा कहते हैं, परमात्मा हमेशा समझा रहे हैं पर अभी तक हम सुन नहीं रहे हैं। फिर जब हमारे मन में फ्रस्ट्रेशन होता है, हम सोचते हैं आखिर क्या है, तब हम जाते हैं साधु के पास, भगवद्गीता के पास, आखिर क्या है। तो भगवान ने यह ज्ञान ऑलरेडी हमको दिया है कि जब आप रिटर्न करोगे, जब आप मुख मेरा अपना मेरी तरफ मोड़ोगे, तब ये लो ये ज्ञान है, प्लीज कम बैक अगेन। तो इस तरह से हम लोग यहां आते हैं, और इसीलिए हमारा उद्देश्य लक्ष्य परम है मनुष्य जीवन का, वापस अपने धाम जाना, अपने घर वापस जाना, वेरी सिंपल। जीवन का लक्ष्य बड़ा आसान है, जेल में है, जेल से बाहर निकल करके अपने घर जाना है, घर में ऑटोमेटिकली सब प्रकार का आनंद है, और जेल में तो कोई आनंद हो ही नहीं सकता, जो भी आनंद लग रहा है वो टेम्परेरी है, इसलिए वो इल्यूजरी है, वो हमारा अपना आनंद नहीं है, हमारा अपना आनंद है भगवान की सेवा में, अपने घर पहुंच करके। तो वो रियलिटी पे हमको वापस पहुंचना है, दैट्स द सम एंड सब्सटेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, वेरी सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड हमें क्यों लगती है, बिकॉज वी हैव मेड अवर ब्रेन कॉम्प्लिकेटेड विद सो मच नॉनसेंस, इसलिए वो कॉम्प्लिकेट लगती है, अदरवाइज वेरी इजी। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो और दुख नहीं, इफ यू जस्ट हैव दिस वन फेथ दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, देयर इज नो मोर प्रॉब्लम एट ऑल। पर ये विश्वास लाने के लिए इतना सब प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इतने दूर हैं भगवान से, वो वहां तक पहुंचने का थोड़ा मुश्किल होता है बस। ओ कृष्ण, आई थिंक विल स्टॉप हियर, हरे कृष्ण। अभी इस प्रश्न में कोई प्रश्न है? अंश है, हाँ जी हाँ जी,
तो भगवान तो कोई बुरा काम करते नहीं,
हाँ जी,
जैसे उपकार करते हैं, लोग बुरे करते हैं, कानून मारते हैं, हत्या करते हैं या इस तरह के,
हाँ जी,
तो ये क्यों करते हैं,
हाँ जी,
तो भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं ना करते हैं, तो वो भी भगवान के अंश और हमारा भी भगवान के अंश,
हाँ जी, तो हम सभी भी अंश हैं, और अंश की एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, तो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सभी लोग अलग प्रकार से उसका यूज कर रहे हैं। हम सब इंडिपेंडेंट डिजायर वाले हैं, तो यदि कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसके अंदर उस प्रकार से भोगने की इच्छा है, जो इच्छा करना है वो जीव करता है।
वो इच्छा तो है, लेकिन जब हम भगवान के अंश हैं,
हाँ जी,
हम अंश हैं,
देखिए
हमारे अपने आप से कहा था कि हमारे हम अपने पिता के प्रतीक है, पिता हमारे उनके प्रतीक है, भगवान हमारे पिता है, भगवान सब अच्छा करते हैं, सब बात अच्छी करते हैं।
हाँ हाँ ओके ओके मैं समझ गया। हम हाँ देखिए हम भगवान के अंश हैं, एक अग्नि है बहुत बड़ी और एक अग्नि का एक चिंगारा है। अग्नि का चिंगारा यदि अग्नि से बाहर निकल जाए तो उसमें बुझने की शक्यता है। जब तक वो अग्नि में रहेगा तब तक वो अग्नि ही रहेगा, लेकिन अग्नि से यदि बाहर हो गया और वो किसी मिट्टी पर आगे गिर गया तो मिट्टी के द्वारा बुझ जाएगा। तो हालांकि हम भगवान के अंश हैं, पूर्ण ज्ञानवान हैं, शुद्ध हैं, लेकिन हम अंश हैं, बहुत छोटे हैं। इसलिए जब हम भगवान से अलग होते हैं तो अविद्या, इग्नोरेंस, मेटल एनर्जी इसके प्रभाव में आ सकते हैं, भगवान नहीं आ सकते हैं। जो भगवान की शक्ति अविद्या शक्ति, इग्नोरेंस, जीव क्योंकि छोटा है इसलिए जब वो भगवान से अलग हो जाता है तब वो इस इग्नोरेंस के कंट्रोल में आने की वजह से ये सब गलत काम करता है। इग्नोरेंस में आ गया क्योंकि अज्ञानता में आ गया। तो हालांकि वो अभी भी कोई गलत आदमी काम कर रहा है पर आत्मा की दृष्टि से वो अभी भी शुद्ध है, पर उसके ऊपर गलत आवरण ढक गया है, इस कवर है, अभी भी शुद्ध है, आत्मा में शुद्ध रहती है, आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती है, पर उसके ऊपर अशुद्धि ढक गई है। तो इसलिए आत्मा तो अभी भी शुद्ध है, भगवान शुद्ध है, आत्मा भी शुद्ध है, लेकिन वो अविद्या, भगवान की जो अविद्या शक्ति है उसके प्रभाव में भी आ गया, इसलिए वो गलत काम कर रहा है। और जब इस अविद्या शक्ति से निकल जाएगा वापस भगवान में, भगवान की तरफ जाएगा, भगवान के सेवा में लग जाएगा, यानी उसकी जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल क्वालिटी वो डेवलप हो जाएगी, फिर दोबारा से कोई गलत काम नहीं। ये शरीर इस तरह से है, हाँ जी,
और नया शरीर मिल जाता है,
हाँ जी,
और ये जो छोटे-छोटे बच्चे जाते हैं,
हाँ जी,
इनके कौन से पुराने वस्त्र हो गए?
बहुत सारे हैं, 84 लाख योनियां हैं।
नहीं, वस्त्र कैसे उनको माना जाएगा कि फटा पुराना वस्त्र?
नहीं, देखिए बता रहे हैं कि देहिनोस्मी, जैसे हम एक बचपन का शरीर, उसका युवा, बूढ़ा, फिर वहां ऐसे ऐसे पुराना हो रहा है ना, फिर जब पूरा फट गया तो फिर एक नया, और नया मिलने के बाद फिर दोबारा से धीरे धीरे पुराना होगा, फिर जब फट गया तो नया, फिर दोबारा से ऐसे नया पुराना, नया पुराना से मिलता रहता है।
नहीं, उनका मतलब जो मुझे लग रहा है कि पूछने का ये है कि ये वेरिएशन क्यों है, मतलब जैसे कोई एक दिन में ही मतलब जो बॉडी छोड़ देता है।
अच्छा,
कोई मतलब एक साल में, कोई 15 साल में, कोई 50 में, कोई 60 में, यही है ना,
ऐसा कुछ
है। तो ये वेरिएशन क्यों?
इसका मतलब ये है कि बच्चे का तो शरीर छोटा है, बड़ा होके फटा नहीं, बड़ा होके फटके नया शरीर मिलने
लगता है, छोटे बच्चे की डेथ क्यों आती है? ओ, अच्छा, छोटे देखिए कोई ना कोई आपके मेडिकल भी पता है ना, अंदर से कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना, हार्ट में, वाल्व में प्रॉब्लम है, बाहर से अच्छा लग रहा है, जवान है, पर अंदर से हार्ट में प्रॉब्लम है, तो भी तो एक पुराना है, वो है ना, प्रॉब्लम हो गई ना उसमें, जो उसका पहनावा है, आपने कपड़ा सिलवाया पर उसका हाथ छोटा था, यहां से नया कपड़ा है पर उसका प्रॉपर साइज नहीं है, तो उसको फेंक के दोबारा नया कपड़ा दूसरा लेना पड़ेगा नया।
नहीं, बहुत से ऐसे प्रॉपर
साइज
जी,
कोई बात नहीं, लेकिन एक्सीडेंट जब होगा तो उनके शरीर का कोई ना कोई पार्ट उसमें डिफेक्टिव हो जाएगा ना, तो डिफेक्टिव होने से वो आत्मा के रहने लायक नहीं रह गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उससे बॉडी में डिफेक्ट हो गया ना,
नुकसान तो हो गया ना,
बॉडी में नुकसान तो हो गया ना, हाँ हाँ हाँ,
के सामने तो कोई भी चाहे बच्चा हो, बच्चा हो,
इसलिए इसलिए शरीर लेकिन
यहाँ दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है,
पुराना तो नहीं बोल
रहे,
मीन्स पुराना इन द सेंस पुराना, पुराना इन द सेंस पुराना, देखिए
ऐसे अपन को कुछ भी नहीं हुआ, ना बीमारी हुई, ना एक्सीडेंट हुआ, ना कोई किसी ने फिजिकली हिट किया, तो एक अपनी नेचुरल साइकिल के बाद जो उसकी लाइफ है वो हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए
कपड़ा फंस के फट जाता है,
जैसे फंस के फंस जाता है, अब फंस के फट जाएगा, नया लिया हो
या
कीली से फट
फट गया
तो वो फट जाएगा,
तो बदलना पड़ेगा,
फट जाएगा तो बदलना पड़ेगा, है ना। और यदि मतलब चला हुए वेल है कि भाई कोई देख नहीं रहा है,
पैच कर सकते
हैं कि वो और एक आध दो साल और उसको भी चले, लेकिन वो यदि ऐसा लगे कि वो अब चल नहीं सकता, मतलब वो
मतलब अनफिट,
हाँ अनफिट टाइप का,
मीन बेस
है कि नया करना है, बदलना पड़े, नया बदलना पड़े,
बदलना तो पड़ेगा, लेकिन जैसे उसको कहा है ना कि इंसान
वो जनरल
और नए वस्त्र पहनता है,
वो जनरल
ऐसे छोटे बच्चे मान लीजिए चले जाते हैं, बिल्कुल फिट है, कहीं से गिर गए मान लीजिए या सामने से गाड़ी आ गई
तो वो नुकसान हो गया ना, मतलब वो तो डैमेज तो हो गया ओरिजिनल से,
जो आत्मा है
ये उनका
वस्त्र हो गया, वस्त्र तो नहीं बदला गया ना,
नहीं
वस्त्र तो नया था, अब आप बाहर पहनते हो उसको
वो नहीं, वही अंतर बता रहे थे कि जैसे नया है शर्ट मान लीजिए अभी निकाला हमने धोया नहीं, लेकिन किसी एक चीज में फंस जाए और फट जाता पूरा, तो अब मैं उसको उतनी लाइफ तक थोड़ी पहनूंगा जितनी अभी इस वाले को पहनूंगा, मैं इसको सीधा निकाल के ऐसा रख देता हूँ और उसको कर देता हूँ, ठीक है ना, जैसे अभी मैं बताऊँ उदाहरण के लिए, जैसे ये
कील क्यों फंसती
है, कील क्यों फंसती है उसका उत्तर है
कपड़े में कील क्यों फंसी,
वो कर्म के सिद्धांत की वजह से,
जैसे क्यों करके जैसे ये टी शर्ट ये मैंने दिसंबर में खरीदी और अभी भी एक भी बार नहीं हुई फिर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने केवल उसको दो ही बार पहना, क्योंकि ठंड में तो पहन नहीं सकते थे, तो मैं उसको वैसे ही ला जरूर ले आया था कि मार्केट गए वो पसंद आई वो ले ली, लेकिन उसमें थी अब ट्रंक से तो हमने अभी निकाली इसको, है ना, तो अभी निकाली तो अभी तो मतलब ये है लेकिन नई है, लेकिन अब ये मान लीजिए नई की नई कहीं फंस जाती है और फट जाती है तो मुझे तो फेंकना तो पड़ेगी,
नहीं हम ऐसे नहीं फेंक रहे हैं,
नहीं
फटे, आप केवल आप शरीर केवल बाह्य मत देखिए, केवल जो बाहर से दिख रहा है वही मत देखिए, उसके अंदर का जो मैकेनिज्म वो भी शरीर के अंदर ही आता है, आप बाहर से देख रहे हैं कि बच्चा अभी फ्रेश बॉडी है पर अंदर उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उस शरीर में प्रॉब्लम ही है ना,
नहीं बिना मैं तो बिना हार्ट फेल वाले को कह रही हूं बच्चा
कोई भी होगा
अभी जा रहा है तो ऊपर लग के गिर
जाएगा, कोई कोई भी होगा कुछ भी होगा बॉडी के अंदर डिफेक्ट तो आएगा ना,
इवन व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न राइट, इवन व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न द नेक्स्ट डे एक्सपेक्ट
स्टिल बॉर्न स्टिल बॉर्न कोई भी yes. कोई भी कारण हो yes, 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 no problem. कोई भी कारण हो कोई भी कारण हो जब शरीर आत्मा के रहने लायक नहीं रहता तब आत्मा को उसको छोड़ना पड़ता है, that's all, simple. कारण कोई भी हो नहीं नहीं कारण माता जी कंजीनियल जन्म से बीमारियां भी होती है ना, बीमारी कंजीनियल भी होती है ना, कंजीनियल मतलब जन्म से बीमारी होती है, आप बीमारी बाहर से क्यों ले रही हैं, किसी का जब पहले दिन से गर्भ धारण हुआ तभी से उसको बीमारी है, वो भी तो बीमारी की नहीं जाएगी,
सिद्धांत बताया था उससे हम लोग विपरीत जा रहे हैं, उन्होंने पहले दिन ये कहा था कि जो इसमें लिखा है
शास्त्रों नहीं
हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं, मैथमेटिक्स और मैं थोड़ा सा बीच में बोल रहा हूँ, हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं जो आपने बोला था कि द गैजेट इज नॉट करना, उसमें मैथमेटिक्स में हिंदी में बोलते हैं स्वयं सिद्धि, प्रमेय बोलते थे, स्वयं सिद्धि का मतलब ये है स्वयं सिद्धि, हिंदी में जो हम लोग हिंदी मीडियम से उसका हिंदी में स्वयं सिद्धि है, तो और इसका इसमें क्या है
एक्सियोमेटिक ट्रुथ,
यस जो आप अंग्रेजी में बोलते हैं, तो स्वयं सिद्धि में हम लोगों को शुरू में जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही बताया गया था, स्वयं सिद्धि का मतलब ये है कि दैट दे आर प्रूफ्ड, अपने आप में प्रूफ्ड, उस पे आपको क्वेश्चन नहीं करना, और अज्यूमिंग दैट जिसको उसको अज्यूम करने के बाद आपको दूसरी चीजें उससे लिख करके स्टडी करना, तो जैसे उन्होंने पहला चीज उन्होंने बताई कि दैट इफ थिंग्स आर ये ये और ये है तो दे आर द राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री अगर उसके बाद आप इस वैल्यू पे जा सकते हैं 0 से 1 या इतने तक, तो पहले अब आप कहोगे नहीं हम इसको 90 नहीं बोलते इसको तो 80 बोलेंगे या कोई कहेगा 110 बोलेंगे, तो कंसेप्ट तो गलत हो जाएगा, तो जो भी एक बार आपको तो कुछ तो मानना पड़ेगा सर, यू कैन कॉल इट 110 लेकिन 110 जब ओरिजिन हुआ था तो यदि 110 बोल देते तो हम उसको 110 जैसे कि एक घड़ी का है, घड़ी में आप बाकी सब तो अपन रुपए में एक से लेकर 100 तक करते हैं, सिस्टम भी अपन डेसिमल सिस्टम करते हैं, लेकिन ये डेसिमल में करते हैं लेकिन ये डेसिमल वाला नहीं है ना, तो ये डेसिमल है ना हमारा बाइनरी है, ना हमारा वो हेप्टोगन वाला हेक्सा वाला है जो हम लोग 16 वाला करते हैं, जो हम डिजिटल में 16 वाला लेते हैं वो है, और ना ही हमारा ये डेसिमल सिस्टम है, ना ही हमारा ये रोमन सिस्टम के अंदर आता है। तो जितने भी सिस्टम वाले हैं उसमें नहीं आता, ये बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो ओरिजिन हुआ है, इसका मैंने कहीं नहीं देखा कि 60 और ये 24 ये ओरिजिन कहां से किया।
वो शास्त्र में है, समय का लमा अंश उसका सब है, निमेश क्षण ये सबकी परिभाषा है। एक क्षण में कितना
है, एक बार तो आपको एक कोई चीज है उसका तो आपको अपने आप में अज्यूम करना पड़ेगा, दूसरी चीजें आपकी डेवलप होंगी, फिर सारी चीज गड़बड़ा, फिर मतलब कोई भी चीज मतलब एवरीथिंग फिर आर्गुमेंट हो जाएगी, हर एक चीज आर्गुमेंट हो जाएगी। मतलब मैं जो मैं समझाऊं ये
आई थिंक ये चीज तो बहुत सिंपल है कि शरीर जब रहने लायक नहीं रहा आत्मा को उसको बदलना पड़ता है, चाहे वो किसी भी वजह से लायक नहीं रहा, बीमारी की वजह से लायक नहीं रहा या अंदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
ये मानना पड़ेगा कोई भी चीज जो मतलब जो इन्होंने कही जो या जो मैं भी मानता हूँ, और कई बार हम जब फ्री रहते हैं जैसे आपने बताया तो चाहे वो महीने में एक बार कभी भी जब भी फ्री रहते हैं तो उस चीजें यदि अपन मानने लगे तो ये तो जरूर है कि कोई ना कोई बाहर की चीज कंट्रोल करती है। कैसे? हाँ मतलब कोई बाहर की चीज कंट्रोल करती है, जैसे अपन मान लें कभी कभी अपन देखते हैं बहुत स्वस्थ आदमी में बहुत स्वस्थ, मतलब बहुत सारे अपन बहुत टीवी पे भी देखते रहते हैं, अपन अपने कभी नॉन आदमी को भी देखते हैं रिलेटेड रिलेशन में भी देखते हैं कि देख ही इज परफेक्ट, मतलब बिल्कुल स्वस्थ, और सडन अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मतलब दैट एक या एक्सीडेंट वगैरह का तो फिजिकल डैमेज हुआ, ये हमें बता रहा हूँ कि जो लास्ट जो अपन कहते हैं पास्ट अवे, और फिजिकली अपन देखते हैं कि दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कैन बी ए 12 साल का भी लड़का हो सकता है, 25 का भी हो सकता है, मतलब 35 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 50 के ऊपर जनरली अपन मानते हैं कि ठीक है, थिंग्स लाइक कार्डियक अरेस्ट या दूसरी चीजें ऐसी एबनॉर्मलिटी बॉडी में डेवलप हो जाती है तो उसको अपन वो नहीं लेते, ऐसे नहीं लेते। द पर्सन दैट जो कि 25 साल का है, सब कुछ फिजिकल, सब कुछ एक्सरसाइज, सब कुछ एवरीथिंग इज देयर, बट सडनली आपको आधा घंटे के बाद आधा घंटे पहले यदि आपने किया हो और आपको लगता है कि दैट इज नो मोर, तो इसका मतलब यह है कि दैट समथिंग डेफिनेटली कोई ऐसी चीज, जैसे फिजिकली आज आपने टेस्ट कराया एवरीथिंग इज देयर, तो कौन सी चीज है कि जो आपको मतलब ठीक है नुकसान हो जाए, हमें सिर दर्द हो जाए जैसे सिम्टम्स का, डेट फिक्स बुखार आ जाए या कोई ऐसी चीज पेन पेन में कन्वर्ट हो,
यस कर्म से
नहीं हुआ और एकदम सडन जो जिसको बोलते हैं हम लोग सडन डेथ बोलते
हैं, यस कॉज कॉज नॉट फाउंड आउट,
कॉज कॉज एक बात डॉक्टर भी नहीं बता पाए, नोट से सब
एक बात दैट वाज एक बात के आपके वो तीन लेवल्स बताए
हैं जी
भगवान के,
हां जी परम सत्य के,
कि ब्रह्म है
परमात्मा
है और फिर भगवान,
हां जी एक ही है पर एक ही है, फायदा ये होगा यस यस, इसलिए एक ही चीज है पर उसके इस तरह अलग अलग है। जैसे मैं सूर्य का उदाहरण देकर आपको समझाया, तो अभी हम लोगों को समझना चाहिए, इसलिए हमारा अंतिम लक्ष्य ब्रह्म में विलीन होना नहीं है, परमात्मा का दर्शन करना नहीं है, बल्कि भगवान के सानिध्य में जाकर उनकी शाश्वत सेवा करना है, ये इसका रिजल्ट होगा। अगर हमें वो क्लियर नहीं है तो हम सोचेंगे सब एक ही है, ब्रह्म में लीन होना ही है बस, लेकिन हमें पता लगा नहीं उसके आगे भी है, उसके आगे भी जाना है,
उससे कोई फर्क पड़ता है
क्या? यस हमारी डेस्टिनेशन चेंज हो गई,
ब्रह्म में आप लीन हो जाए या परमात्मा को प्राप्त कर,
हाँ
या परमानंद,
यस देखिए अगर
इससे क्या फर्क
पड़ता, देखिए अगर आप
सामान्य व्यक्ति जो कि इन शब्दों को नहीं समझता ना अर्थ समझता है, वो तो भगवान को मानता है, हाँ। उसे क्या फायदा होगा ये सारे इस कंट्रोवर्सी में पढ़ के कि ये है,
कंट्रोवर्सी नहीं है, हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं उन लोगों का जो इंटरेस्टेड है स्पिरिचुअल लाइफ में, जो भगवत प्राप्ति के लिए
स्पिरिचुअल लाइफ में होने के लिए क्या इस क्लासिफिकेशन की जरूरत है?
अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कि दिल्ली कहाँ है?
हाँ बिल्कुल सही है,
तो उसी प्रकार से यदि आप भगवान के पास जानते हैं आपको पता नहीं करना चाहिए कि भगवान कौन है कहाँ, कब पता लगाएगा कि आप भगवान के पास पहुंच गए? यदि आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली का पहुंचने के बाद सिम्टम क्या लगेगा, अरे भाई बोर्ड
आज तक किसी ने नहीं समझा
शास्त्रों के,
बताइए किसी ने समझा भगवान,
यस क्यों नहीं, अगर भगवान को अगर
उनके जो अलग अलग व्यक्ति
अगर
भगवान या अपनी बुद्धि अनुसार या अपने इस तरह अनुसार करते रहते हैं भगवान के चार ऊपर,
देखिए मैं बताता हूँ
भगवान के स्वरूप को जान ही नहीं,
तो फिर हम यहाँ डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं यदि कोई जान ही नहीं सकता,
तो आपने जो तीन क्लासिफिकेशन करें क्या इसके रहे
है? ऐसी बात नहीं है, देखिए हम कहें कि एक कमरा है, हम आपसे पूछें इस कमरे की लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई 4 फुट बाई 10 फिट है, दूसरा बोलेगा नहीं 6 फिट बाई 8 फिट है, तो सब अपने अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, तो क्या अपनी अपनी ओपिनियन देने का मतलब यह निकाल लिया जाए कि उस रूम की कोई अपनी वास्तविक लेंथ ब्रेथ नहीं है? नहीं, जस्ट
अ मिनट, नहीं ये तय किया है ना?
नहीं नहीं, एक मिनट,
ये सेंटीमीटर है,
लेकिन वो हम
अभी तय कर रहे हैं ना,
लेकिन नहीं नहीं नहीं, कॉन्फ़िगरेशन कोई भी दे सेंटीमीटर की इंच, पर उसकी एक अपनी माप तो रहती है ना, उसकी अपनी एक माप तो है ना, इसलिए एक अपनी रियलिटी है। अगर कोई व्यक्ति अपने अपने अनुसार रियलिटी को कितना समझ पा रहा है, बहुत सारे व्यूज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी है ही नहीं।
नहीं तो रियलिटी है क्या आखिर?
हाँ तो वो
इतने व्यूज हैं तो एक्चुअल रियलिटी क्या?
इसलिए हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि रियलिटी को समझने का प्रोसेस है कि जो रियल है उसे सुनना, जो रियल है उसे सुनना, और वो है शब्द प्रमाण, शास्त्र। आप पहली क्लास में नहीं थे?
पहली क्लास
अच्छा मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आप,
हाँ जी, अब अंदाज हमने लगा लिया कि इतना बड़ा ये, आपने कह दिया इतना बड़ा, इतना बड़ा, अब इतने जगह बैठे हैं, कम से कम अरबों आदमी, किसी ने ये अनुभव किया हो, या चलिए आपने किया हो अनुभव, आप तो बिल्कुल स्पिरिचुअल हैं, आपको अनुभव हुआ है, आपने साक्षात भगवान को देखा कभी?
देखिए
आप ये जवाब दे दीजिए कि हाँ मैंने देखा,
मैं गुरु ने देखा, मैं नहीं, आप भी देख रहे हैं भगवान को, इस क्षण भी देख रहे हैं, एक आज
पहली क्लास होती
है। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आप, हाँ
कमरा देख रहे हैं,
हाँ जी,
अब अंदाज हमने लगा लिया कि इतना बड़ा ये, आपने कह दिया इतना बड़ा, इतना बड़ा, अब इतने जगह बैठे हैं, कम से कम अरबों आदमी, किसी ने ये अनुभव किया हो, या चलिए आपने किया हो अनुभव, आप तो बिल्कुल स्पिरिचुअल हैं, आपको अनुभव हुआ है, आपने साक्षात भगवान को देखा कभी?
देखिए
आप ये जवाब दे दीजिए कि हाँ मैंने देखा, मैं गुरु ने देखा,
मैं नहीं, आप भी देख रहे हैं भगवान को, इस क्षण भी देख रहे हैं, एक आदमी जिसके आंख में कैटरेक्ट है, उसके सामने को आदमी खड़ा है, वो देख रहा है, पर देख के भी नहीं देख सकता, एक सेकंड, लेट मी फिनिश, पर उसकी आंख की प्रॉब्लम की वजह से वो सामने ही है, फिर भी उसको नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं वही बात बता रहा हूं, यदि आपको भगवान का पता ही नहीं कि भगवान कौन है, यदि भगवान आपके सामने बैठ जाए तो भी तो आपको नहीं पहचान पाएंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर अटल कोई भी है, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं, आपको भी दिखाई दे रहे हैं, पर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे, मैं बताता हूं आपको, वो बताता हूं कैसे, मैं बताता हूं कैसे, कैसे रुकिए, भगवान ये सब शक्तियां भी भगवान की शक्तियां हैं, तो इस दृष्टि से तो हम अभी भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जब हम सूरज की रोशनी का दर्शन करते हैं तो एक दृष्टि से हम सूरज का दर्शन करते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि ये क्या है, सूरज की वजह से है, अभी भगवान का इन आंखों से दर्शन नहीं हो सकता, ये भौतिक है, पर आध्यात्मिक इंद्रियों से भगवान का साक्षात आई टू आई भगवान के रूप का अभी आप दर्शन कर सकते हैं, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संता सदैव देश विलोकयंती, आप हिस्ट्री में कितने सारे उदाहरण हैं जहां लोग साक्षात भगवान के साथ दर्शन किए, उनके साथ बात किए, उनके साथ रहे, इसमें क्या बड़ी बात है?
इसमें बड़ी ये है
साहब, आप तो आंशिक हैं, हाँ जी, अच्छे भगवान पर आपकी लाइफ डिवोट कर दी,
हाँ जी,
तो आपने कभी दर्शन किए?
देखिए हम प्रोसेस में हैं, हम प्रोसेस में हैं, कोई भी आदमी जो भगवान को देखता है वो
बोल, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं है, सब लोग
तो उससे नहीं, उससे तो आप आइए ना प्रोसेस में, आपको प्रोसेस में लेके आने के लिए तो हमारे, आप सबकी बात क्यों कर रहे हैं, आप आइए ना, आप अपनी बात कीजिए ना, मेरे अनुभव होने से भी आपको क्या फायदा होगा, अगर मैं कह दूं मेरे को भगवान देखे, उससे भी आपको क्या फायदा होगा, इससे नहीं नहीं, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ,
क्योंकि एक चीज तो अपन को मानना पड़ेगी, और फिर अपन को बाद में भगवान के दर्शन हुए नहीं हो, लेकिन पहले उस चीज की तरफ तो अपन को जाना पड़ेगा, जैसे उदाहरण के लिए हमें रोज जैसे अंतर क्यों है, मान लीजिए चाहे हमारे लेवल का देख लें या डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए, या हमारे एक ही जैसे लोग हैं, सारे एक ही क्लास में पढ़े हों, या एक ही ग्रेजुएशन हो, या एक ही फैमिली के तीन लोग देख लो, और जैसा बताया था कि सबके सोचने का या बात करने का अलग अलग है, या हमारे अपने ही लेवल, ठीक है ना, सबके सोचने का अलग अलग, किसी को अलग मतलब एटमोसफियर ऐसा अलग अलग नहीं मिला, लेकिन वही बात जो है एक पर्टिकुलर स्टेज पे हो सकता है कि आज से 10-15 साल पहले जो बात जैसे फादर कह दिए, मदर कह दिए, तो जो हम कहते थे, हमने भी यहाँ कह दिया, भाई ने भी यहाँ कह दिया, आज वही चीज, मतलब अभी यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, आज वही मदर वही चीज और कोई एक बात कहे, जरूरी है कि उसको मैं भी वही बात हाँ कह दू, मेरा मदर भी हाँ कहते, या और दूसरे कहते, क्योंकि आदमी के साथ साथ जो साथ की जो सिचुएशन है वो सब बदलती जाए, मतलब हम जो कुछ बोल रहे हैं, जो हम जैसे आज बोलते हैं, उसमें कई बार क्या होता है, एक तो हमारी अपनी होती है अपना, मतलब जो एक इंडिविजुअल, और एक हमारा एक कंपल्शन होता है कि आज जब हम जो कोई चीज कहेंगे तो जैसे ही हम बोलते हैं, मतलब माइंड इज सो इंटेलिजेंट कि जो हम बोलेंगे, एक तो हमारी इंडिविजुअल हो गई, दूसरी चीज क्या, हमारी पोजिशनल हो गई। पोजिशनल इन द सेंस के सपोज आई एम सीनियर, तो हमें फिर भी इनका दूसरे का नहीं भय रहता कि ये हमारी बात माने ना माने, लेकिन हम अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारी पोजिशनल वैल्यू कम है तो हम ये बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो बात हम कहने जा रहे हैं वो इनके लिए क्या असर करेगी, ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे। और हम बोलते समय ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो ये लोग कैसे भी रिएक्ट करें लेकिन मेरे फेवर में रिएक्ट करें, मतलब ये हमारे मन में बोलते कि पहले ये ब्रांड सोच लेता है कि हम जो भी बात कहेंगे ये हमारे फेवर में रिएक्ट करें, और जो हम उसको बात को इस तरीके से कहेंगे कि इनके माइंड को पढ़ते हुए हमें मालूम है कि इनका एटीट्यूड दूसरे टाइप का है और इनको हमें अपने फेवर में लेना है, तो हम ऐसी ही बात कहेंगे। कि इसीलिए क्या होता है कि हमें और दूसरे लोगों में क्या अंतर है, मतलब जो लीडर जैसे कहते हैं मास और हमें क्या अंतर है, हो सकता है कि हम उनसे बात करते हो लेकिन दे नो द माइंड्स ऑफ द पीपल, तो वो एक ऐसी बात करते हैं कि जो मेजॉरिटी के लोगों को सूट करते हैं, भले हम नहीं लाइक करते हो, जैसे अपन किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं है, लेकिन बोलते समय अपन को लगता है कि देखो क्या बोलो, तो हो सकता है कि इट इज नॉट सूटिंग टू मी एज ए इंडिविजुअल आर एज ए मतलब ज्यादा नॉलेजेबल आर इंटेलिजेंट, लेकिन जो वो बात कह रहा है वो मेजॉरिटी को सूट कर रहा है, तो मेजॉरिटी उसको चाहने लगती है। ऐसे यहाँ पे जो है ये जो अपन जो बात कर रहे थे कि मतलब जैसे गॉड का या जो भी जितनी शक्तियां हैं, यदि हम सोचने लगे कि मतलब गॉड है और हम केवल उसको सर्व कर रहे हैं, हम उसको सर्व कर रहे हैं, तो ये एक तो हो गया। दूसरी चीज क्या है, अब ऐसे ऐसे करके इस कमरे में 25 लोग हैं, यदि ये सब लोग उसी डायरेक्शन में सोचे तो डेफिनेटली यहाँ पीस एंड हार्मोनी डेवलप हो जाए, ठीक है ना। ये मतलब मैं केवल अभी इसी कमरे पे कंसंट्रेटेड, गुरु जी हैं आप करेक्ट करते जाना साथ साथ, मैं जो बता रहा हूँ जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं हारमोनी है या पीस क्यों नहीं है, लोग क्यों आपस में लड़ते हैं या क्यों एक दूसरे से कहते हैं कि ये मकान खराब। तो अभी एक पहले एक आदमी से शुरू करें कि हमने गॉड से की और आपने हमें सिखाया कि आप इनको सर्व करिए और आप बाकी चीजों की बहुत चीजों की चिंता मत करें, मैं करने लगा ना। अब इस कमरे में मेरे अलावा और आपके अलावा 10 पीपल, वो भी यदि इसी स्पिरिट में सोचते हैं और यही करने लगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ वेरी पीस एंड हारमोनी इन दिस रूम। फिर आप कहोगे सबसे एक उसमें कहोगे सब छोड़ के चले जाओ तो सब लोग बाहर निकल जाएंगे, फिर सबसे कहोगे कि आ जाओ तो सब चले जाएंगे, आप कहोगे 7 बजे खाना खाने लो, आप कहोगे 10 दिन तक खाना नहीं खाना है तो कोई नहीं खाए, बिकॉज एवरीबडी इज ओबीडियंट एंड दैट उनका एक फोकस इधर है ना। लेकिन सपोज मैं इधर पे हूँ और बाकी के जितने आदमी ये हैं ये डिफरेंट काम करने वाले हैं, कोई मुझे धक्का दे रहा है, कोई मेरा कुछ सामान ले जा रहा है, कोई ये कर रहा है, सपोज मैं उसको ध्यान नहीं दूँ, मतलब उनको इग्नोर कर रहा कि नहीं मुझे तो कोई मतलब नहीं, ये जो कुछ भी कर रहा है चाहे वो धक्का दे के चले गए, अपशब्द बोल के चले गए, कुछ सामान लेके चले गए, कुछ भी चले गए, बट आई एम स्टिल फोकसिंग देयर, तो डेफिनेटली मुझे कुछ नहीं करने वाला। फिर सिमिलरली यदि ये भी इन्फ्लुएंस में आ गए या इनके इन्फ्लुएंस में दूसरे लोग आ गए, यदि ये कंट्रोल में रहेंगे तो हो सकता है डेफिनेटली वैसी वाली हो जाए। लेकिन जब ऑलरेडी जो अभी तक की जो मेरी नॉलेज है जब वो शास्त्रों में शुरू ही हुआ था और जहां से कलयुग की उन्होंने स्टार्टिंग बताई थी कि दैट कलयुग कैसे आए, उन्होंने कहा था तो कलयुग को उन्होंने डिफाइन किया है, कलयुग को डिफाइन किया है कि कलयुग में ये चीज होगी, तो वो तो भगवान ने ऑलरेडी डिफाइन कर दी, इसको आप रोक नहीं सकते। आप सोचो कि आज भगवान रामचंद्र जैसा या कोई आदमी मतलब और दूसरे जैसा वैसा मतलब व्यवहार करने लगे वो तो हो ही सकता, क्योंकि वो डेफिनेशन तो उन्होंने उस ट्रांजिशन में दे दी थी कि कलयुग में ऐसा ऐसा स्टार्ट होगा और ये डिटोरेशन धीरे 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 डिटोरेशन होगा, और जो आपने बताई थी कि 460,000 जो साल आपने गिनाए थे कलयुग का जो पीरियड बताया था वो है, और अभी अपने 5,000 निकले। मतलब मैं तो एक दिन इमेजिन कर रहा था और किसी से बात कर रहा था कि जब 5,000 साल में वी आर सीइंग सो मच डिटोरेशन, मतलब हम अपना डिटोरेशन तो कब देख रहे हैं, सपोज 30 साल
के अंदर में, यस,
और मतलब पूरे पूरा याद नहीं है बचपन से, उस समय तो डिटोरेशन नहीं लगता, लेकिन यदि अपन 25 साल का पीरियड देखें कि जब से हम देख रहे हैं फिर पहले ये था और अब आज ये, तो हमें 25 साल में इतना सोसाइटी में डिटोरेशन लग रहा है, तो अगले 460 साल में क्या सोसाइटी होगी, और तब आके कहीं पे वो मतलब फिर जो इसके क्रिएटर है या जो भी आपका डिस्ट्रॉयर है वो आएंगे और इसका फिर ट्रांजिशन करेंगे अच्छाई की तरफ, तो इतना अभी करना है।
इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे कलयुग का प्रभाव है, हम उसको रोक नहीं सकेंगे, लेकिन हम इंडिविजुअली चाहें तो हम उस पे प्रभाव से बच कर निकल सकते हैं। जैसे कि
बाहर पानी गिर रहा है,
हाँ, लेकिन आप छाता लेके आ सकते हैं, यस,
यानी जबरदस्ती निकलेंगे तो डेफिनेटली हमें पानी की पोछा पड़ने वाला है। इफ वी आर गोइंग टू दैट सेंटर और उतने देर का इंतजार करें कि कुछ निकल जाए, तो डेफिनेटली वी कैन अवॉइड।
या तो छाता लेके जाएं, छाता लेके जाएं,
लेकिन होले ही पड़ रहा है, क्या करेंगे,
मतलब उसके लिए फिर वो कोई पर्टिकुलर बॉडी है,
छाता होता ही नहीं
है, नहीं 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 यहाँ
निकलना नहीं,
लेकिन यहाँ छाता है, लेकिन यहाँ छाता है। हम क्या कह रहे हैं कि कलयुग का प्रभाव रहेगा, लेकिन यदि हम प्रॉपर प्रोसेस यूज करेंगे तो हमारे ऊपर हम कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं, और जितने लोग भी इसको फॉलो करेंगे वो भी कलयुग के प्रभाव से बच करके भगवत धाम जा सकते हैं।
दैट्स सर, ये भगवत गीता में आत्मा का कोई शरीर में स्थान दिया गया?
यस, भगवत गीता में स्पष्ट से एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन आप देखिए तो इसमें ये श्लोक मैं बताया था, आप उसको पढ़िएगा जाकर के, उसके अंदर पर्पोर्ट में हमारे शास्त्रों से पुराणों से लेकर के उसका वो श्लोक दिया गया है। कि आत्मा जो है हृदय में रहती है, हृदय में वास करती है।
शास्त्रों में तो ये प्रमाण तो है कि हर एक इंटेलिजेंट आदमी के पास कुछ ना कुछ गलती जरूर की।
मुंडक उपनिषद 3.1.9
दशरथ का ले लेता हूँ, मतलब ये बात सो मतलब ब्रिलियंट इंटेलिजेंट जो भी कहेंगे एक्सपर्ट, लेकिन उनसे गलती ये हुई कि आवाज पहचानने में उनसे गलती हो, है ना। इसी तरह से आप इनका ले लीजिए
भगवत गीता
जो भी 2.17
ये एज इट इज, ये है आपके इसमें परपट में है,
परपट में
हार्ट
जैसे आप बोलो
या सब है, सब है,
लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक होती है,
प्रेत मतलब
कोई ऐसी चीज होती है, अच्छे काम करते समय भी ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि जिसका कई बार रिजल्ट मतलब जैसे दूसरा करना पड़ता है। जैसे कि कई बार हम लोग गाड़ी चलाते समय मैं हमेशा इसको बोलता हूँ कि दैट ही मे बी सो एक्सपर्ट इन ड्राइविंग, कोई डाउट
सामने वाला
मतलब ठीक है, लेकिन सामने वाला मान लीजिए एक्सपर्ट नहीं है जो रहेगा तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। इट इज लाइक दैट ओनली, मतलब ये है तो ये कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि यू कैन नॉट कंट्रोल इट, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप उसको बच के चल सकते हैं। लेकिन यदि ये सोच लें कि नहीं हमें सामने वाले की चलना है इंटरनेट क्योंकि हम तो अच्छे चलाते हैं, तो डेफिनेटली द डे विल कम देन दैट आपको नुकसान हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयर,
लेकिन स्टॉप हियर। हरे कृष्ण, श्रीमद् भगवद्गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।